be better. तो जब आप किसी सवाल से बहस करकर अपनी कोई नॉर्मेटिव पोजीशन लेते हैं, कोई अकदारी पोजीशन इख्तियार करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसा इल्म मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप ये बता सकें कि ये जो पोजीशन मैंने ली है, इस पोजीशन के अलावा दूसरी पोजीशंस या तो इस हद तक माकूल नहीं है या कम से कम मेरी मौजूदा पोजीशन के मुकाबले में कमजोर है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी प्लेन के ऊपर जब कोई पोजीशन लेते हैं तो उसके पीछे कोई तौजीह होती है, इल्म होता है, कोई बुनियाद होती है। लिहाजा मजहब जब आपसे बुनियादी सवालात के हवाले से कोई जवाब आपको देता है, उसी तरह फलसफा भी आपको कुछ जवाब देता है। लिहाजा आपको फलसफे का माखज़े इल्म कॉन्ट्रास्ट करना पड़ता है मजहब के माखज़े इल्म से। मजहब का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है और फलसफे का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उससे आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं। ये तो पहली बुनियादी पोजीशन है कि आप कहते हैं कि हकीकत क्या है, हकीकत को मैं कैसे जान सकता हूं और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और खूबसूरती क्या है। ये चार बुनियादी जो सवालात हैं, इन चारों सवालात के जवाबात जो है वो मजहब भी देता है, फलसफा भी देता है। तारीख ने ये बताया कि जाहिर है कि दुनिया में एक मजहब तो रहा नहीं, कई मजाहिब रहे। कई मजाहिब रहने के नतीजे में कई जवाबात थे इन सवालात से, यानी कि जाहिर है कि मुख्तलिफ मजाहिब के अंदर मुख्तलिफ जवाबात आपको मिल जाएंगे। मसलन अगर आप ज़ोरास्ट्रियन होंगे तो ज़ोरास्ट्रियन होंगे तो हकीकत आपके लिए आग है। क्यों? क्योंकि फायर गॉड का मैनिफेस्टेशन है, तो अल्टीमेट रियलिटी फायर ही है। लिहाजा हकीकत फायर ही है और फायर को खुदा के तौर पे पहचानने या अल्टीमेट रियलिटी के तौर पे पहचानने के लिए आपने कौन से ज़राए उलूम इख्तियार किए, वो जाहिर है कि उस मेटाफिजिकल असम्पशन से निकलेगी जो हकीकत से मुताल्लिक ज़ोरास्ट्रियंस के पास मौजूद होगी। और फिर इखलाकियात और शर और खैर और शर की जो तमीज़ होगी और तफरीक होगी वो भी उसी जरिए इल्म की मरहून मिन्नत होगी। और उसके बाद फिर जो तसव्वुर हुस्न होगा जो कुछ भी वो भी निकलेगा। लेकिन एक दूसरा रिलीजन वो कहनी रियलिटी तो वुड होता है, जंगल वुड वुड्स होते हैं बहसियत मजमूई। तो जाहिर है उनके पास हकीकत का कोई दूसरा तसव्वुर है, उस हकीकत को पहचानने के लिए ज़राए उलूम भी इंस्टिंक्चुअल है। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स कि जब तुम जंगल को तो तुम में और जंगल में जो चीज शेयरिंग है, जो शेयरेबल है, वो इंस्टिंक्ट है। और अगर तुम अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करोगे तो जंगल तुम्हें तुम्हारी गाइडेंस फराहम करेगा। तो तुमने अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट नहीं किया तो तुम जंगल तुम्हारी फराहम नहीं करेगा, तुम मारे जाओ। हे जंगल ही तुम्हें रिस्क देता है, जंगल ही तुम्हें फतह देता है, जंगल ही तुम्हें कामयाबी देता है, जंगल ही तुम्हें आजाद देता है, सब कुछ तुम्हें, कभी कुछ तुम पाते हो तो कभी कुछ खो देते हो। ये तो कुछ लोग इस तरह, ये नेचुरलिस्टिक रिलीजन है। फिर हिंदुइज्म के आ जाओ तो वहां पर नेचुरलिस्टिक रिलीजन आ गया और नेचुरलिस्टिक, ये तीनों नेचुरलिस्टिक रिलीजन ही है। फिर आप आ जाओ जुडाइज्म आ गया तो जुडाइज्म ने किसी को खुदा का साथी बना दिया, या यू नो क्रिश्चियनिटी आ गई और इस्लाम आ गया। तो एक आम रवैया मजहब के माखज़े इल्म की तरफ लोगों का ये है कि जब हम मजहब कहते हैं तो हमें कमजोर पोजीशन इख्तियार करनी है, इल्मी तौर पर कमजोर पोजीशन। क्यों? क्योंकि जब आप कहेंगे आई एम गोइंग टू डिफेंड रिलीजन, ठीक, तो इसका मतलब है द बर्डन ऑफ 5000 इयर्स विल बी रेस्टेड अपॉन योर शोल्डर्स. द बर्डन ऑफ 5000 इयर्स नोन ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी यू नो फेस्ड बाय द इंडिविजुअल हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट रिलीजन इन कॉन्ट्रास्ट विद फिलोसफी. वाई? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट रिलीजन इंट्रेंसिकली सुपीरियर देन फिलोसफी. तो पहला तो मैं समझता हूँ कि रवैया ठीक नहीं है, मेरा ये ख्याल है. अब ये यहां से मैं जो ले रहा हूँ वो मैं अपना ख्याल, कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं मजहब नहीं बल्कि मैं क्रिश्चियनिटी को ही वाहिद हकीकी दीन समझता हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही हकीकी मजहब मानता हूँ और बाकी सब कोई मजहब वजहब कुछ नहीं. ये कुछ नहीं मजहब, ये सब गुमराही थी ये सब कुछ. तो जाहिर है कि मेरे लिए बर्डन सिर्फ क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करना हो जाएगा. या कोई कहे कि नहीं मैं सबको ठीक नहीं समझता सिर्फ ज़ोरास्ट्रियन, या मैं ज़ोरास्ट्रियन को नहीं समझता सिर्फ इस्लाम. क्यों? इसलिए कि दो रिलीजन बैठ वक्त आप इख्तियार नहीं कर सकते. जाहिर है कि एक ही रिलीजन आप इख्तियार कर सकते, तो आपने इतनी जरूरत होनी चाहिए कि आपने सिर्फ यही रिलीजन ठीक है. क्योंकि रिलीजन होता ही एब्सोल्यूटिस्ट है. रिलीजन बुनियादी तौर पर कोई भी रिलीजन होता है एब्सोल्यूटिस्ट होता है. वो कहता है सिर्फ मैं ठीक हूं, मेरे अलावा सब गलत है. और जाहिर है कि अगर इंसान के बच्चा है कोई तो वो एक ही रिलीजन इख्तियार कर सकता है. अभी एक मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि अगर रिलीजन की प्रायोरिटी आपके पास हो तो कितनी रेलेवेंट पोजीशन बनती है. और अगर आप रिलीजन आपकी प्रायोरिटी पर ना हो, कोई और चीज आपकी प्रायोरिटी हो, तो किस तरह रिलीजन इस्तेमाल भी होता है और आप एक खास किस्म का इल्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं. मैं एग्जाम्पल, तो पहली बात तो ये है कि डोंट गो टू प्रोटेक्ट रिलीजन पर से, गो फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन. वाई? बिकॉज रिलीजन बाय डेफिनेशन इज स्पेसिफिक. उसका अपना जो खैर का दावा होता है वो अल हक होता है, वही है, और इसके अलावा कुछ हक नहीं है. लिहाजा आप सबका बर्डन आप क्यों है? मैं क्यों ज़ोरास्ट्रियंस का प्रोटेक्शन करूं जाके? मैं क्यों करूंगा? तो आमतौर पर जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं रिलीजन साइंस और फलसफे में, तो हम इन तीन चीजों को अलग अलग कर देते हैं और हम समझते हैं कि रिलीजन एक टोटैलिटी है, साइंस एक टोटैलिटी है और फलसफा एक टोटैलिटी है. हम इन्हें एक सॉलिडिफाइड टोटैलिटीज के तौर पर लेते हैं और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि द रिलीजन इन इट्स टोटैलिटी इज टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर फिलोसफी, और फिलोसफी इज टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर रिलीजन, और साइंस इज टू बी प्रायोरिटाइज्ड ऑन बोथ फिलोसफी एंड रिलीजन एक्सेट्रा. अप्रोच खतरनाक है, इसमें फायदा नहीं है, इसमें नुकसान है. लिहाजा मेरी नस्ल में एग्जाम्पल देता हूँ. हमारे जानने वाले जिन्होंने कहा कि अगर मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग शादी करना चाहें तो यूनिवर्सिटी गोइंग जो लोग होते हैं उनका रवैया क्या होता है? जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो कहते हैं सबसे मॉरल पोजीशन क्या है?
ह्यूमैनिटी.
You stick with your religion, I'll stick with my religion, and we will share our life together, and we shall proceed with our relationship, considering that I am not going to sacrifice my religious commitment, but I am not imposing my religious commitment over you, and you are free to pursue your own religious commitments, and we should share our life together. यही आम रवैया है. ये आम जो ह्यूमनिस्टिक मॉरलिस्टिक एटीट्यूड है वो ये. अब अगर कोई आदमी ये कहता था कि मैं यू स्टिक विद योर रिलीजन एंड आई स्टिक विद माय रिलीजन, तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि मुझसे शादी करो और तुम जाओ जहन्नुम में, मुझे कोई परवाह नहीं, यही कह रहा है ना भाई। अगर तुम अपना रिलीजन क्यों नहीं छोड़ रहे, तुम अपना रिलीजन इसलिए नहीं छोड़ रहे कि तुम उस रिलीजन को हक समझते हो, और अगर तुमने अपना रिलीजन छोड़, तुम जहन्नुम में चले जाओगे, जहन्नुम में चले जाओगे ना, तुम जहन्नुम में नहीं जाना चाहते, इसलिए तुम अपना रिलीजन नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते ना, ठीक है भाई, तुम अपने रिलीजन पर कायम रहो। अब एक औरत है जिससे तुम शादी करने वाले हो, पूरी दुनिया में तुमने उसका इंतखाब किया, 5 अरब इंसानों में, लिहाजा सबसे ज्यादा तुम उससे मोहब्बत करते हो ना, जिससे ज्यादा पूरी जिंदगी तुम गुजारने चाह रहे हो, फिर उससे तुम्हारी नस्ल पैदा होगी, फिर वो बच्चे पैदा होंगे, बच्चे देखेंगे माँ क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है। तुम कह रहे हो कि सबसे ज्यादा मैं इस इंसान से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मैं रिलीजियस प्लेन पर भी कॉन्ट्रडिक्शन को बर्दाश्त कर लूंगा, ये मेरी मोहब्बत का सबूत, ये भाई मोहब्बत का सबूत नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि जिससे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो उसको तुम जहन्नुम के हवाले करते हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता
एंड अदर पार्टी इज थिंकिंग इन द सेम
वे, अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है और वो कह रही है कि भाई ठीक है यू स्टिक विद योर रिलीजन, इसका मतलब ये है कि वो कह रही है कि तुम जहन्नुम में जाओ, मेरे साथ जिंदगी गुजारो, लेकिन फिर मरने के बाद तुम जाओ जहन्नुम में, मैं तो अपने जाऊंगी जन्नत में, ये हुआ ना, इसका मतलब है दोनों को आपस में मोहब्बत नहीं है मोहब्बत, नंबर वन। नंबर टू, या तो उनको मोहब्बत नहीं है या फिर रिलीजन उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। जाहिर है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या हो, जिंदगी तो हम गुजार ही लेंगे, और हमारे बच्चों का क्या हो, जहन्नुम में जाए जन्नत में जाए, इररेलेवेंट है ना ये, असल तो दुनिया है। तो भाई अगर असल ही तुम्हारे पास दुनिया है तो क्यों चिमटे हुए अपने मजहब के साथ, हो जाओ ना उसका रिलीजन इख्तियार कर लो, अपनी बीवी का रिलीजन इख्तियार कर लो, या बीवी शौहर का रिलीजन इख्तियार कर लो, क्योंकि रिलीजन तो तुम्हारे लिए इररेलेवेंट है, तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारे डिसीजन से पता चल रहा है रिलीजन तुम्हारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। क्यों? इसलिए कि तुम अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले को तो छोड़ रहे हो, बिल्कुल खुला छोड़ रहे हो, जाओ तुम जहन्नुम में जाओ, मेरे साथ शादी करके रहो, लेकिन तुम जाओ जहन्नुम में। इसका मतलब यह है कि आपका रिलीजियस जो कमिटमेंट होता है ना वो एब्सोल्यूटिस्ट होता है, पूरा का पूरा आपको दाखिल होना पड़ता है उसके अंदर, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो नेचुरलिस्टिक रिलीजन इतने हैं कि उसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, इसलिए वो तो अब रिलीजन कहना भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये कम से कम जुडाइज्म या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के लिए तो आप ये नहीं कह सकते, ये तो बड़े बिल्कुल क्लियर वेल डिफाइंड रिलीजन हैं, ये वेल डिफाइंड रिलीजन है, आप वेल डिफाइंड है, आपको पता चल जाएगा कि ये यहां से क्रिश्चियनिटी के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है इस्लाम को टॉलरेट करना, और यहां मुमकिन नहीं है इस्लाम के लिए क्रिश्चियनिटी को बर्दाश्त करना एक ही घर के अंदर। तो बताने का मतलब ये कि पहली बात तो ये कि जब हम कंट्रास्ट करते हैं रिलीजन को फलसफे के साथ, तो फलसफे को हम एक यूनिफाइड आइडेंटिटी और एक यूनिफाइड एंटिटी के तौर पे लेते हैं, और रिलीजन को हम एक यूनिफाइड आइडेंटिटी के तौर पे लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि यूनिफाइड आइडेंटिटी का सोर्स एक ही है और रिलीजन की भी यूनिफाइड आइडेंटिटी का सोर्स एक ही है। अब हम इन दो सोर्सेज को आपस में कंपेयर करेंगे, कागज है वाले में, मसलन ये कि ये फिलॉसफी है और ये रिलीजन है, और इसका एक एपिसेंटर होगा और इसका भी कोई एपिसेंटर होगा, जिनका बुनियादी तौर पर जो भी कंपैरेटिव एनालिसिस होगा उस कंपैरेटिव एनालिसिस की बुनियाद पर हम इन दोनों की हार्ड कोर्स को एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो जो बुनियादी तौर पर एपिसेंटर है रिलीजन का और फलसफे का एपी सेंटर, इनको कॉन्ट्रास्ट करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि रिलीजन को स्पेसिफाई करें। मसलन ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का जो माखज होगा, क्या जरूरी है कि वो माखज बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिश्चियनिटी का माखज है? یا جو کرسچینٹی کا ماخذ ہے بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پارسیز کا ماخذ علم ہے یا ماخذ علم الحقیقت ہے، تو پھر آپ یہ طے کریں گے کس سے. ہم جب اس ڈسکشن کے اندر ریلیجن اور فلسفے کو کانٹراسٹ کرتے ہیں تو ہم ایپی سینٹر مانتے ہیں ریلیجن کا سورس گاڈ کو، کہ گاڈ ہے اس کا ایپی سینٹر، یعنی کہ اس میں جو حقیقت ہوگی اس کا جو ذریعہ ہوگا وہ گاڈ ہوگا. اور جب ہم کہتے ہیں فلسفہ تو اسے ہم کہتے ہیں ہیومن سیلف، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈسٹنکشن ہم لے کے چلیں گے کہ فلسفہ کسی بھی طرح کا فلسفہ ڈرائیو ہو ہیومن سیلف سے ہی ہوگا، اور ریلیجن کوئی بھی ہو اس کا جو زور ہوگا وہ یہ ہوگا دیٹ ہیز بین ڈرائیو فرام دا گاڈ، دیٹ ہیز بین ڈرائیو فرام دا گاڈ. ایک کا گاڈ اسپیسیفک ہوگا اور ایک کا ہیومن اسپیسیفک ہوگا. کچھ لوگ کہیں گے کہ جب تم گاڈ اسپیسیفک ہوگے تو ہیومن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. کچھ کہتے ہیں نہیں، جب تم ہیومن اسپیسیفک ہوگے تو گاڈ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. یہ دوسری سطح کا تعلق ہے، کیونکہ اگر تم نے نفس کو پہچان لیا، ہیومن سیلف کو پہچان لیا، تو ہیومن سیلف آٹومیٹکلی لیڈ کر دے گی تمہیں گاڈ تک. دوسروں کہہ رہے ہیں اگر تم نے خدا کو پہچان لیا تو وہ آٹومیٹکلی لیڈ کر دے گی تمہیں ہیومن سیلف کی طرف. تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں طرح کے ٹریفک جاری ہیں. کچھ لوگ ہیومن سے گاڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ گاڈ سے ہیومن کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، گاڈ واڈ ایرریلیونٹ ہے، ضروری تھوڑی ہے، نفس کا یہی کام ہو کہ گاڈ تک پہنچائے. بہت سارے فلسفے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں، بحث ہی نہیں کرتے وہ گاڈ سے، وہ تو صرف اس سے بحث کرتے ہیں کہ اسپیسیفک ہیومن کس طرح سے ریلیشن شپ پیدا کرے گا ہیومنس کے ہی ساتھ، تو ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ. اور کچھ لوگ اس سے بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو ہیومن ٹو ہیومن، بلکہ ہیومن ٹو ہیومن اٹ سیلف اس کی طرف توجہ دے دیتے ہیں. تو مختلف جو ہیں وہ پیرامیٹرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جب آپ کہتے ہیں میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو، تو یو شوڈ سے ریلیجن. تم نے کبھی کہا میں ریلیجن ہوں، میں اس ریلیجن کا مان، بھائی تم کسی اسپیسیفک ریلیجن کو مانتے ہو گے نا، ریلیجن کو مانتے ہو گے تم. میں ریلیجن کو مانتا ہوں، ہے ممکن ہے ایسا؟ سارے ریلیجن کو مانتا ہوں، اس طرح کے بھی ہیں ماشاء اللہ، اس طرح کے بھی ہیں. سارے ریلیجن تعدد ادیان کا تصور ہے، ملٹیپلسٹی آف فیتھ کا تصور، لیکن بہت کم خطو ہیں اس طرح کے. اور یہ کہ ان کی کوئی وقت وقت نہیں ہوتی، ان کو بالکل آبسکرینٹسٹ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی مذہبی حلقوں کے اندر. یہ تو سب پٹے ہوئے امریکہ سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، احساس کمتری کا شکار کہ بھائی امریکہ ہمیں مارے گا، جہاں تعدد ادیان کی بات کر لو، اسکالرشپ مل جائے گی، یہ وہ، اس طرح کے. بالکل میں تو اسے کنسپریسی تھیوری کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا کوئی بڑا چیلنج ہے. عام طور پر ریلیجن اسپیسیفک ہوتا ہے، جینوئن ریلیجیس آدمی اسرٹ کرے گا اپنے ریلیجیس. انٹرنیشنلائزڈ ہے ہمیشہ، جو کہ امپیریلسٹ آرڈر کو سپورٹ کرتی ہے، ان کی بڑی انٹرنیشنل سے ہوتی ہے. دیکھ لو سارا پیسہ ہوتا ہے ان کو، فین نظر کو خوب ملتا ہے، ولی نظر کو خوب پیسہ ملتا ہے، سال میں ایک کتاب لکھتا ہے ہر سال، بہت ملٹیپلسٹی آف فیتھ، حامد ارکون ہے ٹر کے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس طرح کے. اور یہ کہ پپلو ٹائپ کی باتیں کہنا جو کہ سب کو اچھی لگے، تو یہ تو بڑا مزہ آتا ہے سب کے لیے، ہاں، تو وہ اس میں کہتا ہے. لیکن بنیادی طور پر ریلیجن، اگر وہ تعدد ادیان کی بھی بات کرتا ہے تو وہ کسی اسپیسیفک ریلیجن کی بنیاد پر ہی کرتا ہے. مثلاً کرسچینٹی کو بنیاد بنا کر تعدد ادیان کی جسٹیفیکیشن دے گا، یا اسلام کے کوئی پینتھیسٹک ورژن کی بنیاد پر تعدد ادیان کا تصور دے. بس پہلے تو تم بتاؤ نا تم کون ہو. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ریلیجن اسپیسیفک ہی ہوتا ہے. میں جب بھی کوئی ریلیجن اختیار کروں گا وہ پرٹیکولر ریلیجن ہی ہوگا، جنرل ریلیجن کوئی چیز نہیں ہوتی. جنرل فلسفہ ہو سکتا ہے، جرنل ریلیجن اور جرنل فلسفہ بنیادی طور پر جو کانٹراسٹ پیش کرتا ہے وہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہوتا اس وقت جب آپ کی کمٹمنٹ کسی مخصوص مذہب کے ساتھ ہے. جیسے میں زندگی کو اسلام اور ادر دین اسلام کے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ریلیجن کو حق نہیں مانتا ہوں. اور اس میں میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں.
لائن آف ایکسپٹینس جو ہوتی ہے وہ پہلے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپیسیفکس کی طرف جاتی ہے. کوئی آدمی یونیورسٹی میں آئے گا تو پہلے وہ یونیورسٹی میں انٹر ہوگا, پھر اس کے بعد وہ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ میں جائے گا. کوئی آدمی ریلیجن وہ کہے گا کہ آئی بلیو آن ریلیجن, دین وہ اسپیسیفکس کی طرف آئے گا.
نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم کہتے ہو
when someone say کہ I don't have a trust on religion, I don't have a believe on religion, جب believe in religion نہیں ہے تو اس کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریلیجن کی طرف کبھی بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں, یو ڈونٹ ایس فار ریلیجن, یو ایس فار اسپیسیفک ریلیجن. تم دعوت دیتے ہو کرسچینٹی کی طرف, جوڈائزم کی طرف, اسلام کی طرف, کس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو بتاؤ, کس کی طرف؟ مطلب جوڈائزم کا گاڈ الگ ہے, کرسچینٹی کا گاڈ الگ ہے, اسلام کا گاڈ الگ ہے, کون سے گاڈ کی طرف بلا رہے ہو بھائی تم؟ اور تمہارے پاس ذریعہ کیا ہے کس گاڈ کی طرف؟ سارے ریلیجنس کو مان لوں میں؟ سارے ریلیجنس کو تو نہیں مان سکتا میں. بیک وقت کانٹرڈکٹری ہو, وہ کہہ رہا خدا کا بیٹا وغیرہ, خدا کا بیٹا نہیں, وہ تو اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دعوت تو آپ دیتے ہیں اسپیسیفک, دعوت آپ دیتے ہیں انسان کو.
اگر ایک ریلیٹیولی دیکھیے ود ان دا ریلیجیس مائنڈ اگر ہم کسی کو بلا رہے ہیں تو اٹ ول بی اے ریلیجیس انویٹیشن. بٹ اف لبرل پیراڈائم میں کسی لبرل مائنڈ کو اگر ہم انوائٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول بی اے انویٹیشن, اے جنرل انویٹیشن ٹو ریلیجن فرسٹ اینڈ دین ٹو دا اسپیسیفکس, isn't it?
نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو میتھڈالوجی کی بات ہے نا, پتہ نہیں کون کون سی میتھڈ. میں میتھڈالوجی کی بات نہیں کر رہا, میں میتھڈ کی پروسیجر کی بات نہیں کر رہا, کہ میں تو ایک پرنسپل اصولی بات پوزیشن لے رہا ہوں. اصولی پوزیشن میں یہ لے رہا ہوں, اسے میں کلیریفائی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بلا وجہ تمام دنیا کے ریلیجنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا برڈن لے رہے ہیں. ہم پوری دنیا کے ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنا نہیں چاہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے کرسچینٹی کا وہ جو کہ حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے اسے ہم اسلام کہتے ہیں, کرسچینٹی نہیں کہتے. حضرت موسیٰ جو لے گیا اسے ہم جوڈائزم نہیں کہتے, اسے ہم اسلام کہتے ہیں. اور جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور یہ سب جو لے گئے ہیں یہ اسلام لے گئے ہیں. اس کے علاوہ جسے تم آج کرسچینٹی کہتے ہو, ظاہر ہے کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے, ورنہ ہمارے کیا ضرورت تھی لڑنے کی 300 سال کرسچنز کے ساتھ؟ ہم کرسچن کے ساتھ لڑ رہے تھے بھائی, حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کے ساتھ تھوڑی ہم لڑتے ہیں, وہ تو ہمارا بھائی ہے, ہمارا قرآن کہتا ہے وہ کمپینین ہے گاڈ کے. اور انہوں نے دھوکہ نہیں دیا حضرت عیسیٰ کو, تمہاری بائبل کہتی ہے کہ دھوکہ دیا ہے حضرت عیسیٰ کو, ہمارا قرآن تو کہتا ہے دھوکہ نہیں دیا, بالکل پکے ساتھ تھے حضرت عیسیٰ کے اور مخلص تھے کمپین. یعنی کہ کبھی کمپینین شپ جو نصیب ہوتی ہے پروفٹ کو, وہ کمپینین شپ ڈیسیونگ نہیں ہوتی ہے. اگر وہ ڈیسیونگ ہے تو پھر وہ کمپینین شپ نہیں ہے. تو کمپینین شپ کو تو ہم ایکنالج کرتے ہیں, لہذا ہم تو کرسچینٹی کی مخالف ہیں, لیکن ہم تو حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو عزت دیتے ہیں اور ہمارے ہیں وہ, ہم ان کو اون کرتے ہیں اور ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. اب آتے ہیں فلسفے کی طرف. ہم نے یہ باٹم لائن یہ لی ہے کہ جب ہم ہسٹری آف آئیڈیاز کو دیکھیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کسی بھی نوعیت کا ہو, جرنل فلسفی ہو, جو کمنٹیٹر ہوتے ہیں جو جرنل فلسفی پہ لکھتے ہیں کمنٹیٹر ہوتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اپنا کوئی نیا فلسفہ جنریٹ نہیں کیا لیکن وہ کمنٹ کرتے ہیں فلسفے کے اوپر, یا کریٹیکل تھیورسٹ ہوتے ہیں مختلف فلسفوں کے اوپر کمنٹری دیتے ہیں, چاہے وہ جرنل فلسفہ پروڈیوس کرتے ہیں چاہے وہ اسپیسیفک فلسفیز پیش کرتے ہیں, وہ بنیادی طور پر نفس کو ہی پہچانتے ہیں, سیلف. تو وہ جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ نفس سے ہی نکلتا ہے, اور جو یہاں پہنچتا ہے وہ نفس ہی تک پہنچتا ہے, سیلف سے نکل کر سیلف تک پہنچتا ہے. تو بنیادی طور پر جب آپ فلسفے پہ متوجہ ہوتے ہیں تو نفس پہ توجہ دیتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول فلاسفی ہو، چاہے وہ کلیکٹیوسٹک فلاسفیز ہو، چاہے وہ فاؤنڈیشنلسٹ فلاسفیز ہو، چاہے وہ اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ فلاسفی ہو، ایوری فلاسفی از دی پروڈکٹ آف دی ہیومینٹی آف این انڈیویجول. ایوری فلاسفی از دی پروڈکٹ آف دی ہیومینٹی آف این انڈیویجول. پہلی بات. دوسری بات کہ گو کہ وہ اظہار ہوتا ہے ایک انفرادی نفس کا ہی، لیکن بڑا فلسفی وہ ہوتا ہے جو بڑا فلسفی مانا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ جو میرے نفس سے نہیں نکلا، یہ بلکہ حقیقت میرے نفس سے باہر تھی، میرے نفس نے اس حقیقت کو ڈسکور کر لیا. یہ میرے فلسفے نے جو تمہیں بتایا، چاہے وہ علم کی سطح پر ہو، چاہے وہ ریالٹی کی سطح پر ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی سطح پر ہو، چاہے وہ حسن کی سطح پر ہو، وہ اپنی معروضیت کی سطح پر میرے نفس سے باہر تھا، میرے نفس نے اسے پہچان لیا، میری سیلف نے اسے ڈسکور کر لیا کسی طرح. اب میں نے ڈسکور کر لیا ہے، تمہارے پاس بھی نفس ہے، تم بھی ڈسکور کر لو. نہیں کر سکتے تو میرے پیٹرن کو فالو کر لو تو تم ڈسکور کر پاؤ گے. تو بنیادی طور پر جو میتھڈ، جو دعوت ہوتی ہے اس کی، وہ یہ کہ دا ٹروتھ ہیز ناٹ بین ڈیرائیوڈ بائی مائی سیلف، اٹ ہیز بین ڈسکورڈ. ٹھیک ہے، یہ دوسری. اس کی بنیاد پر وہ چاہتا ہے ٹرانسینڈنس، کہ ٹرانسینڈ کر جاؤ اپنے نفس سے، اور جب تم ٹرانسینڈ کرو گے تو پھر تم حقیقت کو ویسا دیکھ پاؤ گے جیسا کہ حقیقت ہے. لہذا میں جو فلسفہ تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ حقیقت فی نفس ہی کیا ہے، حقیقت کو تم کیسے جان سکتے ہو، اور حقیقی طور پر خیر شر کیا ہوتا ہے، اور حقیقی طور پہ حسن کیا ہوتا ہے. بڑا سسٹم بلڈر جو ہوتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے. لہذا مختلف لوگ مختلف اینکرز استعمال کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ نفس سے اوپر اٹھ جائے فرق، اور وہ کہے کہ یہ جو فلسفہ ہے وہ میرے ذہن کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کا انکشاف ہے، حقیقت منکشف ہوتی ہے اس فلسفے کے اندر، اور ریلیٹ کر سکے وہ زندگی میں اپنے ارد گرد مظاہر فطرت کو اور مظاہر حقیقت کو، اور وہ فلسفہ اسے ان مظاہر کی انڈرسٹینڈنگ اور امپلیکیشنز اور انٹرپریٹیشن میں مدد کرتا رہے. بنیادی طور پر وہ پیش اسے ایسے نہیں کرتا کہ دیٹ از سم تھنگ، اٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز بین derived from the self, rather it is the self which discovered or some way understand the structure of reality persisting independent of my mind.
اور یہ discoverers مذہبی ہوتا ہے؟
نہیں، مذہبی
یا تو پھر ان کے ایٹیٹیوڈ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں مذہبی ہونا چاہیے.
کیوں؟
اس لیے کہ یہ discoverers ہیں، they are not creators. اور ذرا اس حوالے سے بھی سر روشنی ڈالیے گا کہ کانٹینین اور اینٹی کانٹینین اپروچ جو ہے، جو کہتا ہے کہ میرا ذہن صرف میرے ذہن کو حقیقت بلاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے یہ نہیں ڈسکور کرتا، اور ایک اینٹی کانٹینین، آئی تھنک آئی ایم مکسنگ اٹ، اینٹی کانٹینین سائڈ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی، وہ حقیقت میرے ذہن میں ہوتی ہے، میں اسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں.
دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ مذہبی یہ نہیں ہوتا، کہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر تم فلسفے کی دنیا میں یہ کہو کہ یہ فلسفہ جو ہے اب، یا یہ جو میرے دعوے ہیں یہ اپنی شناخت اور اپنی سچائی کے لیے میرے مائنڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو اسے ہم فلسفے میں ایک گالی کے طور پہ لیتے ہیں جسے ہم سولپسزم کہتے ہیں، می اینڈ مائی ورلڈ، یعنی کہ یہ میرے سے شروع ہو کے میرے پہ ختم ہوگی. تو اگر تم نے ایسا فلسفہ دیا جو سبجیکٹ اسپیسیفک ہے اور وہ بھی تمہاری دنیا ہی اس کی انتہا ہے، تو لوگ، وہ بڑا فلسفہ نہیں بنتا. بڑا فلسفہ وہ بنتا ہے کہ ایک فلسفی نے کہا اور وہ آفاقی لگنے لگا. سکتا
سر ڈسکورر بھی رینج باؤنڈ نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی ڈسکوری سے پہلے ہی اس بات کا की नियत करता है, इस बात की अपनी लिमिट्स डिफाइन करता है कि भाई मैं डिस्कवर कर सकता हूँ, आई कैन नॉट क्रिएट।
नहीं नहीं, ये तो मैं एक कभी फलसफी ये नहीं कहता कि मैंने डिस्कवर किया। फलसफी ये कहता है कि मैंने हकीकत को वैसा देख लिया जैसा कि हकीकत थी। ये मेरा कमाल है, किसी दूसरे में दम नहीं है ऐसा कि वो देख सके। और पहले तो ये बताता है जिसने देखा गलत देखा है, पहले तो वो ये बताता है इन भाई ने देखा बिल्कुल गलत देखा, कुछ नहीं पता इनको, इनने तो ये
है
क्या क्या प्रूफ करता
है।
प्रूफ तो नहीं हुआ ना बिल्कुल, क्या प्रूफ हुआ
सामने
है। तो मतलब ये कह रहा हूँ उसको निगेट कर देता है, उसके बुनियाद पर एक दूसरा आदमी आ जाता है वो उससे उसे उसे निगेट कर देता है।
लेकिन होता ये है ना, मतलब इनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि ख्याल के तौर पर अरस्तु जो है मतलब आया, मतलब उसकी जो भी फलसफा था जाहिर उसने कोई दलील दी और वो दलील ऐसी थी कि उस जमाने के लोग उसके सामने खामोश हो गए। तो इनका ख्याल है कि देखे ना मतलब
प्रूव हो गया
दलील थी, हालांकि इसकी वजह ये थी कि जो लोग वहां मौजूद थे वो उनकी मतलब जहनी सतह अरस्तु से कम कर दी, वो उसका जवाब नहीं दे सके। लेकिन उसके बाद जो है 100 साल बाद 1000 साल बाद उसकी सारी दलीलें रद्द हो गई।
सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। हेगल का इसके लिए पूरी मेटाफिजिक्स बताया था कि क्यों ऐसा हुआ, उस वक्त क्यों नहीं हुआ, उस वक्त क्यों नहीं अरस्तु की सतह का आदमी पैदा हुआ। वो कहता है वर्ल्ड हिस्टोरिकल एजेंट जो होते हैं वो उनके जरिए वर्ल्ड स्पिरिट अपना इजहार करती है, अरस्तु के जरिए उसने कर दिया अपना इजहार। उसके बाद जो है दूसरा आदमी जो अरस्तु कह गया था उसकी कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लोर करने के लिए वक्त दरकार था, जब ह्यूमन वर्ल्ड स्पिरिट ने अपना इजहार किया, इंसानियत बहसियत मजमूई ज्यादा रैशनल हुई, तब उसे पता चला अच्छा ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो ये बुनियादी तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट का जो भी चेन है और रेफ्यूटेशन का जो भी चेन है और कन्विक्शन का और कन्विंस हो जाने का जो चेन और नेटवर्क और फ्रेमवर्क है वो बुनियादी तौर पर घूमता किसके, कौन कन्विंस होता है, कन्विंस कौन होता है, सेल्फ कन्विंस होती है ना, किससे, सेल्फी से होती है ना, यही तो कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। एक सेल दूसरी सेल से कन्विंस हो जाए, लिहाजा जो भी फलसफा होगा वो कॉन्शियस स्पेसिफिक होगा, नेगेटिव नहीं। मैं तो बता नहीं, मैंने तो एक पोजीशन बताई कि फलसफे में जो खैर और शर और अच्छा बुरा जो कुछ भी निकलता है ना वो निकलता है सेल्फ से ही। ठीक, अब सेल्फ से कितना अच्छा निकल सकता है, क्या वो गुडनेस निकल सकती है जो कि गॉड से निकलती है, क्या वो निकल सकती है उस सतह की, उस सतह का। नहीं नहीं, पहले ये मुझे बताओ, ये उसूली बात नहीं, मैं फलसफे की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ जो खैर गॉड से निकलेगा और ह्यूमन सेल से उनमें फर्क होगा क्वालिटेटिवली या नहीं होगा। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब, क्वालिटेटिवली फर्क होगा, क्यों क्या फर्क होगा बुनियादी तौर पर, गॉड भी तो एक कॉन्शियसनेस ही है ना, नफ्स है ना, वो सेल्फ है ना, वो भी बीइंग है ना, कॉन्शियसनेस है ना, एग्जिस्ट करता है ना, वो सोचता भी है महसूस भी करता है, बीइंग है ना, वो बीइंग है ना, वो और वो महसूस भी करती है, सब कुछ करती है वो भी। वो तुमसे कह रही है ये होता है भाई गुड, और जिसे तुमने बड़े सोच विचार के बाद लेके आओ ना, ये नहीं होता बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मैं कह रहा हूँ ये नहीं होता ऐसा। तुम सोच होता है आग हवा मिट्टी पानी मिलके बनाते हैं खैर और ये होता है, और ह्यूमन जो है वो फायर है या ह्यूमन एयर वो क्या, नहीं ये मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ये हो, क्यों, क्योंकि मैंने तो बनाया है, मुझे पता है ना। अब आपको अच्छा अच्छा ये पता नहीं क्या इन्होंने कह दिया, चलो इसको रखो, अब ये निकाल रही है क्या डिकार्ड से क्या। तो जाहिर है कि इसका मतलब ये है, ये एक रवैया है, रवैया ये है कि आप ये समझते हो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जो ट्रूथ निकलता है या गॉड से जो ट्रूथ निकलता है, क्वालिटेटिवली गॉड से निकलने वाला ट्रूथ सुपीरियर होगा, लेकिन
वो गॉड से ही निकला है या नहीं, ये है मसला। मसला ये नहीं है कि वो गॉड का ट्रूथ क्वालिटेटिवली सुपीरियर, सवाल ये कि जिसे मैं गॉड कह रहा हूँ गॉड का से निकला है कि नहीं। तो भाई सबसे पहले तो जाके आप अपना ईमान का वो करो, अपना ईमान ईमान ठीक करो, और जिस चीज को तुम डिफेंड करने निकले हो उसके बारे में अपना ईमान ठीक करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई शक वक है कि पता नहीं ये जो कुरान में कहा गया ठीक है भी कि नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है भी कि नहीं, प्रॉफिट ने खुदा का पैगाम सही पहुंचाया भी कि नहीं, फिर सहाबा ने उसका तहफ्फुज़ सही तरह से किया भी कि नहीं, और उसके बाद जो तफासीर लिखी गई वो भी ठीक लिखी गई कि नहीं, और ये जो हम तक पहुंचे, फिर तुम्हारे ईमान का जाओ जाके ठीक करो उसको। फिर तुम रिलीजन की बात बात क्या करो, रिलीजन को रखो साइड में और कहो भाई आइए है फलसफा। क्यों? इसलिए कि जो भी फलसफी कहता है उसको तो तुम ट्रैक डाउन कर सकते हो ना कि भाई ये बात नीचे ने कही है कि नहीं। ये तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तो पॉसिबल है कि वो आप बता सकते हो कि भाई ये नीचे ने एक एक लफ्ज जो नीचे ने कहा महफूज है बिल्कुल वैसा ही जैसा नीचे ने कहा था, बल्कि मैं आपको बताऊं एरिस्टोटल ने जो कहा था एक एक, एक लफ्ज वैसा का वैसा ही महफूज है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, एरिस्टोटल के नफ से जो निकला था एरिस्टोटल से रिलेट कर आप बता सकते हो, लेकिन खुदा के कॉन्शियसनेस से जो निकला क्या उसी तरह महफूज है कि नहीं? तो अगर नहीं है, अगर तुम्हें शक है तो जाओ भाई फिर अपने ईमान का इंतजाम करो तुम पहले, सबसे पहले इस चक्कर में पढ़ने से पहले कि ये क्या, तो फिर तुम अपने ईमान ईमान का इंतजाम करो।
लेकिन ईमान का इंतजाम तो खैर एक ज़मीनी मसला है, बुनियादी बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जो मतलब खैर जो खुदा से निकला है ये इसी को सनद नहीं है, तो इस स्टेटमेंट की सनद क्या, मतलब सिर्फ एक मेयर स्टेटमेंट है, क्या उसके पीछे इल्मी तुम्हारा जो मतलब एतराज है?
सही बात,
कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मतलब
नहीं वो इल्मी गुमान का जो पैमाने वो वही है ना जो कि फलसफे की दुनिया में
माने। चलो उसमें भी तो जाओ उसके अंदर,
फलसफे की दुनिया में पैमाना ये है कि आप बता दें कि ये आदमी ने के ही दस्ते मुबारक से ही निकल के आया।
जो है
जैसे
हम कहते हैं
मतलब
खुदा ये बात कह रहा है, लेकिन जो खुदा को ही नहीं मानता
फिलोसफी के साथ, फिलोसफर के साथ
तो ये बड़ा मसला
है कि खुदा को ही नहीं मानता।
नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं जो नहीं मानते। ज्यादातर मानते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है कि सोल जो है सोल का क्या रोल होता है यहाँ पर?
सोल
किस चीज में? सर किसी भी चीज को मानने के लिए, चाहे वो रिलीजियस स्टेटमेंट हो या
सवाल ये है कि मैं तो बता रहा हूँ ना कि ह्यूमन सेल्फ, अब जब आप कहोगे भाई मैं तो फलसफियाना तौर पे चीजों को देखता हूँ, तो फिर तुम फलसफे का डिसिप्लिन इख्तियार करोगे। अब फलसफे के डिसिप्लिन में किसी चीज को इख्तियार करने के लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि क्या जरिया इल्म है जिसकी बुनियाद पे मैं इस चीज को कबूल करूं। तो तुम्हें उस जरिया इल्म की क्रेडिबिलिटी को तुम देखोगे, उसकी सोर्स ऑफ नॉलेज को देखोगे, उसकी थियोरी ऑफ मोरालिटी एथिक्स को देखोगे, उसकी एस्थेटिक्स को देखोगे, उसकी मेटाफिजिकल असम्पशंस को देखोगे, उन मेटाफिजिकल असम्पशन से जो क्रिटिक डेवलप हुई है उनको देखोगे, फिर कहीं जाके तुम उसको कबूल या रद्द कर रहोगे। रिलीजन के अंदर तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। रिलीजन के अंदर प्रॉफिट आके तुमसे कहता मैं प्रॉफिट हूं खुदा का और तुम मेरी बात मानो, अब कैसे तुम फलसफे का डिसिप्लिन इख्तियार करोगे ना? फलसफे का डिसिप्लिन इख्तियार जब तुम करोगे प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट तो वो टेस्टिफाई नहीं कर सकता, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फलसफी थोड़ी होता है, वो फलसफी थोड़ी है, वो तो तुम्हारे ईमान की तरफ तुम्हें बुलाता है, और जाहिर है तुम्हारे पूरे के पूरे वजूद को मुतासर कर रहा है, तुम्हारी रीजन को या तुम्हारे हवास को या तुम्हारे विज्ञान को या तुम्हारी अथॉरिटी को, एक चीज को नहीं, पूरे के पूरे इंसान से वो डील करता है। पूरे के पूरे इंसान से डील करने के नतीजे में उसका डील करने का मतलब उसकी जिस्म भी है, उसकी रूह भी है, उसका वजूद भी है, उसकी तारीख भी है, पूरे वो आम आदमी नहीं होता, वो गॉड की तरफ से आया हुआ आदमी होता है, वो एड्रेस करता है। लिहाजा जब वो नाकाम हो जाता है अगर अभी प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये होता है अब ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, ये ही नाकाम हो गया, तो अब फिर जिस आदमी के साथ कोई ये काम, क्योंकि पूरी की पूरी बींग जो है कबूल नहीं करने पर तैयार है, کیونکہ پوری بینگ کمپریہنسو بینگ اس سے ڈیل کر رہی, لیکن وہ نہیں مان رہا تو پھر آپ اس کو سزا ملے گی, سزا دیتا ہے فارمس. تو بتانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فلسفے کا ڈسپلن اختیار کرتے ہیں تو ہم فلسفے کی بنیاد پر چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں, لیکن جب ہم مذہب کا ڈسپلن اختیار کرتے ہیں تو اسپیسیفک مذہب کا ڈسپلن آپ اختیار کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کرسچینٹی میں کرسچن ڈسپلن اختیار کریں گے, آپ جوڈائزم میں جوڈائک ڈسپلن اختیار کریں گے, آپ اسلام کے اندر اسلامک ڈسپلن اختیار کریں گے. وہ ڈسپلن جب آپ اختیار کریں گے تو باتیں چیزیں آپ کے لیے قابل قبول یا قابل ستائش ہو جائیں گے اور چیزیں آپ کے لیے ناقابل قبول ہوں. لیکن اگر آپ نے فلسفے کا ڈسپلن اپلائی کیا ریلیجن کے اوپر تو آپ ایک حماقت کریں گے. آپ حماقت یہ کریں گے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نفس سے نکلے ہوئے اصول ہیں ماتحت ہو جائے وہ علم جو کہ خدا کے نفس سے نکلے, یہ آپ چاہیں. تو پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ جو نفس سے جو اصول نکلے ہیں فلسفے کی تاریخ میں, ان اصولوں کے اطلاق ہمیشہ کریڈیبل ہوگا, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس, نمبر ون. نمبر ٹو, ضروری ہے کہ اس پیمانے پہ اگر کوئی پورا نہ اتر پائے تو آپ اس کو رد کر دیں, کیا یہ ممکن ہے, کیا یہ ضروری ہے, اور کیا دلیل ہے آپ کی کہ آپ اس خیر اور اس حقیقت کے لیے اپنے اصولوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے, کیوں کیوں آپ تبدیلی نہیں کرتے, نہیں کرنا چاہتے, کیوں نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو پہچاننے کے لیے ان دونوں نفوس میں سے میں جس نفس کو زیادہ قابل اعتبار سمجھتا ہوں وہ وہ ہے جو کہ نفس انسانی سے نکل کر آتا ہے, اور جو نفس سے خدا سے نکل کے آتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں وہ خدا کے نفس سے نکل کے آیا بھی ہے یا نہیں, نمبر ون. نمبر ٹو, اگر وہ خدا کے نفس سے نکل کے آیا بھی ہے مجھ تک پتہ نہیں ٹھیک طرح پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا, اور تیسری بات اگر مجھ تک ٹھیک طرح پہنچ بھی گیا ہے تو بھائی میں اسے کسی نہ کسی پیراڈائم میں تو سمجھوں گا نا, تو میرے پاس تو سمجھنے کی جو کیٹیگریز ہیں وہ تو نفس انسانی سے ہی وضع کرتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں عام طور پر رویہ اختیار, جس کے نتیجے میں بہت ہی کوالیفائنگ ان فیکٹ یو کنسیڈر سیلف ایز دی الٹیمیٹ کرائیٹیرین. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نفس کو ہمیشہ کچھ اصولوں کے ماتحت ہونا پڑتا ہے, چاہے وہ نفس کی پرستش ہی کیوں نہ ہو. مثلاً میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کائنات کے اوپر, اس مادی دنیا کے اوپر اپنی ول امپوز کروں, میں یہ چاہتا ہوں. میرا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہوا اور بارش اور زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اور سمندر اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پہ میری حکومت ہو. ہاں, ہمارے اسٹوڈینٹ نے کہا تھا کہ وہ قرآن کیا ہے نا, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان سے اونچے ہو سکتے ہو. تو میں کہا سر ہم تو زمین سے پہاڑ سے اونچے بھی ہو سکتے ہیں اور زمین کو پھاڑ بھی سکتے ہیں. امریکہ کے پاس جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اگر وہ ایک ساتھ دھماکے سے پڑ جائیں زمین کا آدھا کرا ٹوٹ جائے گا, ہاف آف اٹ اسفیئر ول کریک ڈاؤن, آدھا کرا ٹوٹ جائے گا, اتنا اس کے پاس نیوکلیئر ویپن موجود ہے امریکہ کے اوپر. تو ہم زمین کو پھاڑ بھی سکتے ہیں اور ہم آسمان سے اونچے بھی ہو سکتے ہیں. بھائی جو چاند پہ چہل قدمی کر رہا ہے آسمان سے اونچا ہو گیا نا, پہاڑ سے تو اونچا ہو گیا کم از کم, نیل آرمسٹرانگ ہو گیا نا, اور نیل آرمسٹرانگ وہیں سے بیٹھ کے اگر ایک انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک میزائل مار دے نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ تو ظاہر زمین کو پھاڑ بھی دے گا وہیں سے بیٹھے بیٹھے. چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں امریکنز اگر چاہیں تو چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. بلکہ ایک بار سجیشن دی تھی 80s کے اندر جب میں اسٹوڈنٹ تھا 1992 میں, تو ہمارے انہوں نے لے کر آئے تھے ٹیکس اور اس پہ ہم نے بعد میں گروپ ڈسکشن کیا کہ
एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर हम जमीन किसी तरीके से चांद को तबाह कर दें और उसको रेजों में तब्दील कर दें तो जमीन में एक ही किस्म का टेम्परेचर रहेगा और एक ही किस्म का मौसम रहेगा और बिल्कुल हेवन बन जाएगी जमीन। सही, तो कैपेसिटी है तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह के जो सुबह 9 बजे जो कॉफी टाइम के अंदर जो आगे नहीं बैठ जाते एक्सपर्ट और अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, ओबामा ये कर ले, ओबामा वो कर ले, ओबामा ये, ओबामा को चाहिए कि वो ये कर, जैसे ओबामा बैठा सुन रहा है। और वो लोग कितने बेवकूफ है जो उनको सुन रहे होते, उनमें मैं भी शामिल, मैं सुन रहा होता हूँ कि ये क्या कह, क्यों, क्योंकि हमारे घर फिर वो ही आ रहा होता है तो हम वो मैं नाश्ता करते हुए सुनता हूँ कि क्या ये लोग क्या है। तो उस तरह के मशवरे वो नहीं देते, वो मशवरे दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो जो मशवरे दे रहे हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकली। तो अगर फर्ज किया कि टेक्नोलॉजिकली आप इस काबिल हो गए हैं कि आप ये सब कुछ कर सकें, तो इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि कोई ना कोई डिसिप्लिन आपको इख्तियार करना। मैं ये चाहता हूं कि मैं कायनात पे अपना इरादा मुसल्लत कर दूं, तो पहला काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे अपने नफ्स को मातहत करना पड़ेगा साइंसी उसूलों के, ये करना पड़ेगा साइंसी उसूलों के मातहत किए बगैर तो मैं अपने नफ्स को मुसल्लत नहीं कर सकता कायनात के ऊपर। तो कायनात पे मैं अपनी विल को मुसल्लत करने के लिए अपनी विल पर अपनी विल के साथ उसूल साइंस मुसल्लत कर लेता हूं, करता हूं कि नहीं। इसका मतलब है जब मैं अपनी विल के ऊपर कुछ उसूल मुसल्लत कर लेता हूं, जो बिल्कुल उसूली बात बता रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरी विल वो नहीं कर सकती जो उसूल साइंस के खिलाफ है। यही हुआ ना भाई इसका मतलब, यही है ना इसका मतलब। इसका मतलब है कि असल में किसका उसूल मुसल्लत होता है, मुसल्लत होता है। और साइंस का उसूल क्यों मुसल्लत होते हैं, इसलिए कि वो हकीकत है। और वो किसने बताया तुम्हें, किसने, इंडिविजुअल सेल्स ने नहीं, ह्यूमन कलेक्टिव सेल्स ने। एक सेल्स ने कुछ डिस्कवर किया, फिर इन्होंने कुछ और डिस्कवर किया, तो उसने कॉपरनिकस ने कुछ बताया, और कॉपरनिकस के बाद केपलर ने कुछ बताया, और केपलर के बाद गैलीलियो ने कुछ बताया, और गैलीलियो के बाद न्यूटन ने कुछ बताया, और न्यूटन के बाद आइंस्टाइन ने कुछ बताया, और फाइनमैन ने कुछ बताया, उसके नतीजे में कलेक्टिव ह्यूमन नॉलेज। तो साइंस इज द कलेक्शन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो वो एक इंडिविजुअल की सेल्फ नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन सेल्फ है, ह्यूमन मैन विद कैपिटल है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मैन मौजूद है, उसमें न्यूटन भी है, और कैपलर भी है, और आइंस्टाइन भी है, और फाइनमैन भी है, और बोहर भी है, और रदरफोर्ड भी है, और हाइजेनबर्ग भी है, और ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ, लेकिन उन सबको सिंथेसाइज कर एक उसूल बना दिया कुछ। तो आप कायनात पे अपना जबर मुसल्लत करने के लिए साइंस का जबर अपने ऊपर मुसल्लत करें, और साइंस का वो जबर बहुत सारे इंसानों की कदों काविश का नतीजा। तो बुनियादी तौर पर साइंस या मेथड ऑफ साइंस या फलसफा, ये सब नफ्स से ही निकला है, बुनियादी तौर पर तो नफ्स से ही निकला है, सेल्फ से ही निकला है। और वो सेल्फ बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि ज्यादा ऑथेंटिक है बनिस्बत के उससे जो कि गॉड से निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेसेबल है, और ये ट्रेसेबल नहीं है। ट्रेस कैसे करोगे
सर? ट्रेसेबल तो ये भी नहीं है, यहाँ जाता है और पीछे चले जाते हैं तो वो ये कहता है कि बिग बैंग थी, उसके बाद एक इंडियन खड़ा होता है कहता है कि अगर फर्स्ट बिग बैंग हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है, और फिर वो डार्विनियन जिंदगी को वहां से शुरू करता है। और हम इसी तरह से एक दफा लिबरल्स के साथ एक डिस्कशन हो रही थी कि जब तुम्हारा ट्रेसेबल भी नहीं है, और प्लस ये कि तुम्हारा भी उतना ही फ्रेजाइल है जितना तुम समझ रहे हो कि हमारा फ्रेजाइल है, तो कम से कम इन दोनों के बीच में फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सुपीरियोरिटी कंसिडर करेंगे, जी आपके آپ کا جو جسے آپ خیر سمجھتے ہیں اس کی سپریورٹی
ہے. یہ کہتا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جب لوگوں نے اس فریجائلٹی کو کوشچن کرنا شروع کیا تو لیبرل نے اپنا ماڈل بدل دیا, انہوں نے ڈی آنٹولوجیکل کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس سوال سے بحث ہی نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے, ڈی آنٹولوجیکل ہو جاتا, بھول جاؤ اس کو کہ خیر کیا ہوتا ہے.
تو پھر بنا مقصد کے بنا ڈائریکشن کی زندگی
نہیں, میننگ تم دو گے, یو ول گیو میننگ, یو شیل بی ایز گاڈ. اس کی کتاب کا نام ہے ایرک فرام, یو شیل بی ایز گاڈ. ہو ول گیو دا میننگ؟ یو ول گیو دا میننگ. یس, دیٹس واٹ لائف.
یہ جو ڈریڈر کا اسٹیٹمنٹ وہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اسے ہم مطلب دیتے ہیں,
نہیں وہ تو گریڈا کہتا ہے مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, میننگ سے کبھی تمہاری ملاقات ہوتی نہیں. ڈی کنسٹرکشنسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ورڈ سے ورڈ کی طرف جاتے ہو, ہاف آف اٹ از ناٹ دیئر اینڈ ہاف آف اٹ از ناٹ دیٹ. تو کہتا ہے میننگ سے کبھی ملاقات ہوتی نہیں. گریڈا بالکل الگ قسم کی چیز ہے, بالکل اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ ہے. لیکن ابھی میں نے جو بات آپ کو بتائی وہ یہ بتائی, پہلی بات کہ اصول کے ماتحت نفس ہوتا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ فلسفے کے اصول ہو چاہے وہ مذہب کے اصول. اور نفس اسپیسیفک ہوتا ہے ان اصولوں کے حوالے سے جن کو اس نے قابل عمل یا قابل ستائش یا قابل اتباع سمجھ لیا. ان اصولوں کے اتباع کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان اصولوں کے اتباع کے نتیجے میں میں اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاؤں گا, ٹرانسینڈینٹل ہو جاؤں گا, اور وہ مجھے حقیقت کو مشاہدہ ویسا کرنے میں مدد دے گی جیسا کہ حقیقت ہے. مطلب تین اسٹیپ میں آپ پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ نہ کچھ رولز کو تو فالو کرنا پڑے گا, سائنس کے بنیادی اصولوں کو یا فلسفے کے بنیادی اصولوں کو میں مان لوں گا, اور ان اصولوں کو جب میں مان لوں گا تو وہ اصول مجھے مدد دیں گے اوپر اٹھنے میں اپنی ذات سے, یعنی کہ وہاں سوری سے مجھے اوپر اٹھ کر ہیومن بنا دیں گے. ہیومن, ایک ایبسٹریکٹ ہیومن, جو کہ نہ کسی میں کسی کا بیٹا ہوں, کسی علاقے میں پیدا ہوا ہوں, ایک خاص قسم کا میرا سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, میری ایک خاص قسم کی ایتھنیسٹی ہے, اس سے اوپر اٹھا دے گا, اوپر اٹھا کے مجھے ایک ایبسٹریکٹ ہیومن بنا دے گا. اور اگر انہی بھائی نے بھی وہ اصول اختیار, یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ہیومن بن جائیں گے, اور یہ بھی اور وہ بھی, اور ہم چاروں ایبسٹریکٹ ہیومن کے پلین پر جب ٹرانسینڈینٹل پلین پر آئیں گے تو ہمارے درمیان اشتراکی عمل پیدا ہو جائے گا. اور ہمارے درمیان اشتراکی عمل کیوں نہیں پیدا ہوتا, یہ اپنی کلچر پرٹیکولیرٹی اور اپنی ہسٹوریکل پرٹیکولیرٹی میں ڈسگری کرتا ہے خالد بھائی سے, اور میں خالد بھائی سے ڈسگری کرتا ہوں, اور یہ میرے سے ڈسگری کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ ہم اسپیسیفسٹی میں پھنسے ہوئے, تو ہمیں وہ اصول اوپر اٹھا دیتے ہیں. اسی طرح سے سائنس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ سائنس میں کچھ اصولوں کو اگر تم مان لو گے تو تمہیں اوپر اٹھا دیں گے اس پرٹیکولیرٹی سے. اگر تم کوانٹم فزکس کے اصولوں کو مان لو گے تو تمہیں کلاسیکل فزکس کے پریجڈس سے اوپر اٹھا دے گی, اگر تم کلاسیکل فزکس کو قبول کرو تو کوانٹم فزکس کے پریجڈس سے تمہیں اوپر اٹھا دے گی. اس کے نتیجے میں جو کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس کا اینٹیگنزم ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو. یو کین ورک ود اٹ کلاسیکل فزکس ماڈل اور کوانٹم فزکس ماڈل اور مختلف.
لیکن یہ جو مطلب اٹھنے کا سلسلہ ہے تو
اور یہ اٹھ کے آپ نے بتایا نا کہ پھر کسی دوسرے,
تو کون سا مطلب اس سے یہاں پر آپ کہیں گے اب انسان کو اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو کوئی
جو آخر میں اٹھے گا وہ کہیں گے جتنے پچھلے تھے وہ سب بیکار کی باتیں کر رہے تھے, اور ناؤ واٹ ایم آئی سیئنگ از دا فائنل لائن.
ہمیشہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں, وہ کہہ رہا تھا ہیگل آئی ایم دا لاسٹ فلاسفر.
لیکن اس میں مطلب ایک تو مطلب اس کا ایک پازیٹو مطلب پوائنٹ بھی اگر آتا ہے, مطلب اس کی عدالت جو ہے ہمارے کر رہے تھے پوز جو ہے مطلب, یعنی کم از کم ٹھیک ہے مطلب کہ اگر جو ہے مطلب سائنس اور فلسفے کے پرٹیکولر کرنٹ ٹائم کے اندر پرٹیکولر اصولوں کے تحت لوگ اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں سوچ رہے ہو, خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی ہو, ارسپیکٹو آف اینی کلاس اور کریڈ اور ریس اور ریلیجن, تو جو نتیجے پر وہ پہنچے گا اپنے سیلف کے, تو وہ نتیجہ تو ایک ہی ہوگا.
नहीं, सब एक नतीजे पे तो नहीं पहुंचते।
नहीं मतलब अगर एक पर्टिकुलर पैराडाइम ऑफ फिलोसफी और पर्टिकुलर पैराडाइम ऑफ साइंस के अंदर एक पर्टिकुलर जो आपका एक्सपेरिमेंट है अगर वो करें तो हाँ वो इधर हो या उधर हो या उधर हो और वो जो पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ
हाँ।
तो नतीजा तो एक ही होगा
नतीजा
तो मतलब ये कम अज कम ये कि सेल जो है वो इसे खास पर्टिकुलर पैराडाइम के अंदर एक इज्तिमाइत क्रिएट कर सकता है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप आपने डेवलप कर लिया है, आपके पास इसकी क्या दलील है कि इसके अलावा किसी दूसरे कॉजल रिलेशनशिप में वो दूसरा नतीजा नहीं देगी?
अर्केबल तो है,
अर्केबल है। और
अगर अर्केबल है तो इससे ये है कि इंसान जो है मतलब ट्रैवल तो कर सकता है ना, मतलब पर्टिकुलर एरिया से जो है मतलब।
नहीं मसला ये है कि बुनियादी तौर पर जो अगर फर्ज किया कि हम ये कहते हैं कि भाई इसके नतीजे में वर्केबिलिटी मुमकिन है और आफाकियत मुमकिन है, लिहाजा हम ये कबूल कर लेते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं कि ये हकीकत को पहचानने का वाहिद काबिल अमल जरिया है। तो जाहिर है कि ये जब आप कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रूथ के ऊपर एक खास पसंद की हेजमनी इस्टेब्लिश होती है, यानी कि जब एक डिस्कोर्स गालिब आता है तो ये थोड़ी होता है कि दूसरे सारे डिस्कोर्स भी साइड बाय साइड चले, ऐसा नहीं होता। दूसरे डिस्कोर्स गैर मोतबर होने शुरू हो जाते हैं, एक डिस्कोर्स जब इस्टेब्लिश होना शुरू होता है तो उसके नतीजे में दूसरे डिस्कोर्स इररेलेवेंट होने शुरू हो जाते हैं और उसके नतीजे में हर आदमी उस डिस्कोर्स की तरफ तवज्जो देता जो कि प्रिवेलिंग डिस्कोर्स है और उसके नतीजे में उसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं वो बज़ाहिर उसकी स्ट्रेंथ दिखाई देने लगती है उस वक्त तक के जब तक के कोई दूसरा कॉन्शियसनेस किसी दूसरी सतह पर जाकर उसको चैलेंज ना करे। हमारे लिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देखें असल में एक इंसान की उम्र अगर आप देखें, अगर हम कहते हैं यार ये दुनिया में जितने सारे इंसान हैं अरबों इंसान हैं तो क्या, और फिर इंसानों की तारीख 5000 साल की, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो अभी है और 5000 साल से लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखें क्या 20 साल से पहले तो उसकी जहनी सतह इस काबिल ही नहीं होती कि कुछ समझ पाए, या आपका जो निजाम जिंदगी उसे इस काबिल छोड़ता ही नहीं, 20 साल तक तो वो मशीन की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और जब 20 साल 22 साल का 24 साल का वो डिग्री लेके निकलता है तो अगले 30 साल के लिए फिर किसी इदारे में जुड़ जाता है, हैं? और 60 साल में मर जाता है, 52 साल में मर जाता है, 52 साल में मर जाता है। तो मतलब असल में जो उसके उसको आप किसी न किसी तौर पर इंगेज कर सकते हैं वो ईयर होते हैं जो 25 से लेके 35 तक का टाइम होता है, ये 10 साल, ये 10 साल 10 गोल्डन ईयर जिन्हें मैं कहता हूँ गोल्डन ईयर होते हैं। इस गोल्डन ईयर में अगर आपने उसको सही इंगेज कर लिया तो आपने मैदान मार लिया अगले 30 साल के लिए। तो जो लोग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, कम अज कम मैं स्ट्रेटेजी के तौर पे कहता हूँ कि आपको असल में जिसमें डिफरेंस पैदा करना है इंसान के 25 से लेकर 35 साल की उम्र की जिंदगी, इस वक्त वो बड़ा ताकतवर होता है, बहादुर होता है, ब्रेव होता है, करेजियस होता है, मक्कार नहीं होता, धोखेबाज कम होता है, इस वक्त वो अपनी सबसे बेहतरीन पोजिशन में होता है, इस्तेमाल हो जाने के इम्कान उसके कम होते हैं क्योंकि वो इतना बच्चा भी नहीं होता। उस वक्त आपको उसको अट्रैक्ट करें, उस वक्त आपको उसको ठीक, अगर उस वक्त जाग गया तो फिर आपकी उसको जरूरत नहीं, खुद ही अपना निकाल लेगा मसले का। आपको इस 10 सालों के अंदर उसे बताना है कि मसला क्या है, जिस मसले को तुम मसला समझते हो मसला नहीं है, मसला ये है। अगर फर्ज किया दुनिया में जितने बड़े थिंकर हैं फलसफिया हैं जिसने उन्होंने जाकर हिट किया है लोगों को, वो यही टाइम होता है, वो हिट कर देता है आदमी और उसके नतीजे में एक ऐसा चेन रिएक्शन होता है, एक ऐसा चेन रिएक्शन, ह्यूमन माइंड बिल्कुल चेन रिएक्शन की तरह काम करता है और वो जब चेन रिएक्शन आता है तो उसका इम्पैक्ट बनने में 40-42 साल होते हैं, उलट के रख देते हैं पूरे के पूरे माशरों को। इट टेक्स ईयर्स, सिर्फ 10 साल का खेल है ये पूरा का पूरा। लेकिन सवाल ये है कि आपने राइट टाइम पर राइट लोगों को इंगेज किया कि नहीं किया, अगर आपने ऐसे ही यू नो बदकिरदार लोगों के साथ आप डील करते रहे तो आपने बहुत जाया कर दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह
कि जो करने का वक्त होता है, जो हम कहते हैं ना कि कंसेंसस, कंसेंसस तो बदमाशी के ऊपर भी पैदा हो जाता है। इसकी बुनियाद कंसेंसस तो कोई बुनियाद नहीं बनता किसी चीज से खैर होने की। मैं तो नहीं समझता कि जर्नल अग्रीमेंट कोई बुनियाद बनता है। आप बिठा लो लोगों से, जनरली वो किस बात पे खबासत पे एग्री करेंगे। मैं तो यही देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लगता है मेरा उतना बैठना हदीसों में ज्यादा हो, लेकिन मैंने तो यही देखा कि कंसेंसस बिल्ड करना, कंसेंसस तो गारंटी नहीं होती खैर की। बहुत सारे लोगों का खैर पे नहीं होता कंसेंसस। और क्या डिस्प्यूट नेसेसरली शर होता है? क्या डिस्प्यूट नेसेसरी शर नहीं होता? हर डिस्प्यूट नेसेसरली शर नहीं होता, इंट्रेंसिकली वो शर नहीं होता। इंट्रेंसिकली डिस्प्यूट है, लोग मर रहे हैं दोनों तरफ से, और आप कह रहे हैं नहीं डिस्प्यूट इंट्रेंसिकली डेविलिश नहीं है, दोनों जन्नत में जाएंगे, दोनों की नमाज बनाकर एक ही आदमी पढ़ा रहा है। किया ना आपकी तारीख के अंदर डिस्प्यूट और कंसेंसस तो कोई गारंटी नहीं बनता। सब डेमोक्रेसी का ढकोसला, और होता किस चीज के ऊपर है कंसेंसस? कोई कंसेंसस नहीं होता, कोई कंसेंसस नहीं होता, दबा देते हैं लोगों को, आवाज आप पता ही नहीं चलता कहां गए हो। तो पहली बात तो ये कि ये जो अग्रीमेंट की बुनियाद होती है तो कोई गारंटी नहीं बनती किसी चीज के इंट्रेंसिक खैर होने की। अगर इब्राहिम को खत्म करने वालों में दरमियान अग्रीमेंट था तो खैर हो गया, जाओ सबने कहा इसमें हमारे वो उनकी नाके काट दी है, वो ये तो बड़ा जालिम आदमी है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, सब एग्री करें तो खैर हो गया ये। और बधाई बात भी ठीक है, अब अगर फंस गया ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, बड़ी खतरनाक काम किया यार इब्राहिम ने, ऐसा क्यों किया? गिल्ट में चले जाते ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन पढ़े, इबादत गाह जो थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कितने ज्यादती का काम किया, बजाय के अपना कोई अपनी मस्जिद वस्जिद खोल के बैठ जाते। और ये उन्होंने क्या किया, और अपने ही बाप के बनाए हुए अपने बाप की आर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, और ये बाप जब बना के देता था मूर्ति है तो उसको घसीटते हुए लेके जाते, रस्सी से बांधी घसीट रहे हो ले जाते, लोग क्या कर रहे हो तुम बदतमीजी घसीट रहे हो, तो कहा ये हमारे खुद आप सोचे जल्दी जल्दी खरीद लेते थे लोग। तो बताने वाला ये कि अग्रीमेंट जो है वो दुनिया में खैर की दलील, पूरी दुनिया के मुसलमान अग्री कर रहे हैं शराब बहुत अच्छी है, हम लोग सबको शराब पीना चाहिए, तब भी वो खैर नहीं होगा। और दुनिया के तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स, मैं तो इस तरह का ऑर्थोडॉक्स टाइप का आदमी हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमान उलमा जो 10 साल में किसी वजह से हिट हो गए और सबके दिमाग आउट हो गए, और सबने कहा कि भाई ये सब शराब माशाल्लाह अच्छी चीज है, और ये कि साइंस ने भी बता दिया है और सोशियोलॉजी ने भी बता दिया, थोड़ी बहुत शराब सबको पीनी चाहिए, हर लोगों को नमाज के बाद थोड़ी सी शराब मिलेगी, और ये कि सब लोग जिनको नहीं पसंद होती है दवा समझ के भी इजमा हो अगर हो गया, नहीं अल्लाह का शुक्र है इजमा नहीं होगा, इजमा कभी शर के ऊपर नहीं होगा, ये खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, कभी नहीं होगा इजमा इंशाल्लाह। लेकिन अगर फर्ज किया हो जाहिर है कयामत का दिन ही होगा, कयामत आएगी फिर भी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि खैर बदल जाएगा कंसेंसस की बुनियाद पे। कंसेंसस की बुनियाद पे खैर, कंसेंसस इसलिए बुनियाद बनता है कि आपको पता नहीं है कि खैर क्या है, वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली ट्रूथ इज, दैट्स व्हाई वी नीड कंसेंसस। डेमोक्रेसी में खैर को अचीव थोड़ी किया जाता है, खैर क्रिएट किया जाता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कंसेंसस। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर में आप जाते हैं इसलिए है कि हमें नहीं पता कि इंसानियत की फलाह का सबसे बेहतर तरीका क्या है और रियासती अमल को चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, इसके लिए हम कंसेंसस बिल्डअप करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं ना खैर क्या है।
ये भी तो एक स्टेटमेंट है, मतलब असलन तो पता है खैर है क्या,
डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर वायलेट अगर करें उस प्रीएम्बल को जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर, तो कहता है वैसे कुचल दो जैसे मलेरिया को कुचलते हो, वैसे कुचल दो दबा दो उसको जैसे मलेरिया को कुचलते हो और दबाते हो। तो पहली बात तो ये कि जो कंसेंसस ओरिएंटेड और जर्नल अग्रीमेंट ओरिएंटेड جو میکینزم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں خیر نہیں پتا. میں کہہ رہا پروفٹ جا کے پوچھتے تھے لوگوں سے صحابہ سے. چلے بھائی آپ لوگ بتائیں کنسنسس ہے کہ کر دیں یہ شراب حرام یا نہیں کریں؟ چھٹی آئے تو بتا دیتے بھائی یہ ہے اس کو فالو کرو. اور جن چیزوں کے اندر وہ نہیں ہوتا تھا اس میں مشورہ کر لیتے تھے.
اسی کو اٹھا کے ماڈرن
اس کو ریلیجن کے ساتھ اس کو کنسنسس بنا دیا مشورے کو. تو بھائی جو ٹروتھ کے معاملے میں کب اگری وہ کیا ہے, ٹروتھ کے معاملے پر, ٹروتھ واٹ ایکچولی ٹروتھ از, جبکہ آپ کے پاس ٹیکسٹ بھی موجود ہو. یا صحابہ نے کس نے کیا ہے, حضرت علی نے کب کیا ہے, یا حضرت عمر نے کب کیا ہے, یا حضرت عثمان نے کب کیا ہے, یا حضرت ابو بکر نے کب کیا, چاروں میں سے کس نے کیا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو اگریمنٹ کا جو چکر ہے نا وہ ایک خاص قسم کا پریزمپشن ہے کہ بھائی. اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑی بددیانت یہ ہے کہ تم ایک ریلیجن کو حقیقت مانتے ہو اور تم لوگوں کے سامنے کہتے ہو چلے بھول جاتے ہیں کہ نہ مسلمان. یہ کیا بدماشی ہے؟ کیوں بھائی بھول جاؤں میں کیوں بھول جاؤں؟ اور اگر میں بھول رہا ہوں تو سمجھو میں بد کردار آدمی ہوں. میں کوئی ایسا انٹرسٹ دینا چاہتا ہوں جس کے نظر میں اسلامک بنیادیں رکاوٹ پیدا کر دیں گی, کوئی میں محروم رہ جاؤں گا اس سے, اس بدماشی سے. میں کیوں ہو جاؤں, میں کیوں قبول کروں اس بات کو اگر میں اس کو, اس کا مطلب ہے میرا ایمان ٹھیک نہیں ہے. مجھے اپنے ایمان پہ توجہ دینی چاہیے, پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرو پھر آگے جا کے بک بک کرو. اگر آپ کہتے ہو چلے بھول جاتے ہیں ہم اس کو آ جائیں, میں کبھی نہیں بھولوں گا اور نہیں بھولنا چاہیے. اور جو کہتا ہے کہ میں بھول جاؤں جھوٹ بولتا ہے وہ بچ کے طرح, اس سے بات نہیں کی جا سکتی. بات اس سے کی جائے جو ابو جہل کی طرح کا ہو, انسسٹ کرے. میں تو اس کو خیر نہیں مانتا ہوں, خیر نہیں ہے یہ.
ٹھیک ہے تو یہ آ گئے کہ آپ کی اپنے پرسپیکٹو پر ریجیڈیٹی. تو جب دو بالکل اپوزٹ پرسپیکٹو کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟
کچھ نہیں, کیا ہوگا, جو خیر ہوگا وہ پریویل کر جائے گا.
مطلب ان کا یہ ہے جو کہ ایک مطلب کامن آرگومنٹ ہے جو یہاں پر کئی مرتبہ اسٹوڈنٹ نے اٹھایا, جیسے آخر نائک صاحب پر گفتگو جو تھی تو سب بھی طالب علم جو آخر نائک صاحب کی تحریر وغیرہ اور ان کی تحریریں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, انہوں نے بھی اسی سوال کو اٹھایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے سب بہتر تھا آپ کے ٹھیک ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہم کسی ایک مغربی انسان سے جو مذہب کو نہیں مانتا, کلام اللہ کو نہیں مانتا, کلام رسول اللہ کو نہیں مانتا, اس سے جب ہم گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی مشترکہ بنیاد ہونی چاہیے, کیونکہ مشترکہ بنیاد سائنس ہو سکتی ہے, کیونکہ سائنس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر اسپیسیفک پیراڈائم اور اسپیسیفک فلاسفی اور اسپیسیفک اسپیسیفکیشنز کے اندر کی ہیں تو سمجھے. تو اگر ہم سائنس کو ایک مشترکہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے کسی کو مذہب کا خیال کر دیں تو اس میں حرج
نہیں. اگر وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گھیتلا ہے, بے وقوف ہے, وہ اس کو عقل نہیں ہے, وہ اگر آپ کو کنوینس کر لے تو آپ چھوڑ دو گے ریلیجن؟ آپ چھوڑو گے یا نہیں پہلے یہ سوال. یہ کیسے آپ نے پرزیوم کر لیا کہ ہمیشہ آپ پریویل کرو گے وہ بالکل کدو ہے؟ وہ کیا کدو ہے بھائی, وہ پڑھا لکھا ہوا تو الٹ کے رکھ دے گا نا دو منٹ میں آپ کو. آپ نے یہ کیسے پرزیوم کر لیا؟ ذاکر نائک کے جتنے پروگرام آپ نے دیکھے اس میں آپ نے دیکھا اس نے دھول چڑھا دی, اس میں کتنی دھول چاٹی ہے یہ آپ نے دیکھی ہے؟ بتایا آپ کو یہ اس کی ریکارڈنگ کہاں گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آرگیومنٹ جو ہوتا ہے جب پیش کیا جاتا ہے جس فریم ورک کے اندر, اس فریم ورک کی اپنے اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں کو آپ ماورہ سمجھتے ہیں اس خیر سے یا نہیں؟ اگر آپ ان اصولوں کو ماورہ سمجھتے ہیں اس خیر سے تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ خیر تک پہنچنے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں کو تم اختیار کر لو خیر تک پہنچ جاؤ گے. اس کا مطلب ہے ریویل ٹیکس کی کوئی حیثیت نہیں, ضروری نہیں ہے, ان اصولوں کو فالو کر کے کوئی بھی پہنچ جائے, ہے نا بھائی؟ یہی ہوا نا اس کا مطلب. دوسری چیز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اصول کس نے بتایا,
तो आपने कहा भाई इंडक्ट साइंटिफिक मेथड से पता चले वो उसूल, और ये यूनिवर्सली एग्रीड है और हिस्टोरिकली भी एग्रीड है। तो दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकल प्रोसेस के नतीजे में भी कुछ ऐसे उसूल निकल आते हैं जिनको इख्तियार कर हक तक पहुंचा जा सकता है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट। तो दोनों सूरतों में प्रोफेसी की नफी हो जाती है। तो क्या तुम्हारा तरीका ये रहा है या नहीं रहा? जो तरीका तुम्हारे पास रहा है वो तरीका जो कि प्रैक्टिस तुमने किया है उस तरीके को तुम नहीं इख्तियार करते हो और दूसरा तरीका तुम इख्तियार करते हो। सवाल ये है कि तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? आप कहो कि भाई नहीं, मसला ये है कि दुनिया में जो इल्म है वो साइंटिफिक नॉलेज ही है, तो जाहिर है कि जब उस सतह पे मैं पहुंच जाऊंगा तो लोग मुझे आलिम मानेंगे और फिर मेरी इल्मी दलील को वो पहचान लेंगे।
तो फिर बुश्तर का असास जो है क्या होगी?
वही ना,
गुफ्तगू के लिए
बुश्तर का असास नफ्स इंसानी होगा और क्या होगा?
अगर ये ना करें तो फिर क्या करें? मतलब अगर साइंस के जरिए इस्लाम को ना फैलाएं तो क्या करें?
मेरे लिए तो बात खुद ये मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि साइंस के जरिए इस्लाम कहाँ फैल रहा है। मैं तो नहीं जानता कि कोई इस्लाम फैल रहा है इस तरह से। ये तो बिल्कुल, आप बताएं कौन सा फैक्चुअल है? मैं आपको बता सकता हूँ, हजारों के तादाद में लोग कन्वर्ट होते हैं बिल्कुल लठ मार जाहिल आदमियों के हाथ, बिल्कुल लठ। हमारे केडीए का जो ग्राउंड में जो काम करता था ना, वो जो होता है ग्राउंड मैन, उसका नाम था अब्दुल्ला, नहीं बलोच था वो, अब्दुल्ला इस तरह का ही नाम था, अल्लाह अब्दुल्ला। ये वो चर्च पीते थे और चर्च बेचते भी थे, ये उनका हालत है। हिजाज सेहत के उसूलों के मुताबिक स्पोर्ट्समैन को चर्च की सप्लाई का जिम्मेदारी उन्होंने अपने ठेके में दी थी, इसलिए जो भी लड़का वहां स्पोर्ट्समैन बनने आता था चर्ची बन के निकलता था वहां, तो उनसे सब नफरत करते थे बहुत सारे लोग। वो किसी का तबलीगी जमात के हत्ते चढ़ गए, तबलीगी जमात वाले को खाने पीने का बहुत शौक है, खाना पे खाने पे खाने पे खाने पे खिला खिलाए खाने खिला खिलाए खाना खिला खिलाए गए उसको, पहले ये लारा लप्पा दिया उन्होंने कि चर्च पीने के बाद खाना चाहिए, उससे सेहत अच्छी रहती है वो, तो उनको चर्च सुनकी छूट गई। फिर वो तीन तीन दिन के चिल्ले लगाने शुरू, तीन तीन के बाद चार महीने उसके बाद उसने जर्मन सीख ली। कैन यू इमेजिन, एक बलोच आदमी जर्मन सीख ले जो कि बिल्कुल कुछ नहीं जानता, वो जहीन था लैंग्वेज सीखने की, उसके अंदर सलाहियत ज्यादा थी, तो उसकी जो वो हुई किसी जर्मन के साथ हुई जो यहाँ पे आया हुआ था, उसके साथ लग गया उसके बाद जर्मनी चला गया। सात आदमियों को वो कन्वर्ट करा के लेके आया हुआ था, सात आदमियों को कन्वर्ट करा के पाकिस्तान लेके आया हुआ था जर्मन्स को। जर्मन वो लोग हैं जिनके रगों के अंदर फलसफा दौड़ता है। एक आम आदमी जर्मन से तुम्हारी मुलाकात हो ना, फलसफे पे कुछ ना कुछ उसने डेफिनेटली पढ़ा होगा। मैं तो कम से कम गोयटे के हवाले से जिस जर्मन से मिला कुछ ना कुछ उसे फलसफे, और बहुत प्राउड फील करता है वो अपने ट्रेडिशन के ऊपर, बहुत बड़ा दिमाग होता है जर्मन्स का। वो जर्मन्स को जाके कन्वर्ट करके ले आया, उसने क्या फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट दिया होगा? वो खड़ा होकर दिया गया अल्लाह बड़े हैं, और अल्लाह ये जो अल्लाह ये हजरत जिब्राइल का जो पर है वो इतना बड़ा, और हजरत जिब्राइल के सर पे था तमाम, जो उनका पानी अगर डाल दिया जाए तो खतरा बाहर निकलता, सब लोग सुनते रहे और सब निकल जाए सो जाते हैं। तो लेकिन ये जर्मन को उसने क्या बोला होगा? तो क्या जर्मन देखो को इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स किया होगा? तो कुछ नहीं, उससे कहा मर जाओगे तुम जहन्नुम में ये होता है जहन्नुम में। कहा यार ये होता है, मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? तो बल्कि मैंने उससे पूछा भी, ये हमारा दोस्त है गोयटे पढ़ा था उसने, मैंने कहा यार ये तो हमारे मोहल्ले में होता था, बोला अच्छा इसकी सब बनी हुई थी ये वहां गया हुआ था, तो उससे पूछा कि मैंने कहा जर्मन में पूछो इससे कि कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो कह रहा है रोज पहुंच जाता था मेरे पास और मुझे डराता है तुम मर जाओगे तो क्या होगा। तो ये कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को बहुत अर्ली हार्ट अटैक्स होते हैं, हमारी हिस्ट्री ये है कि बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स होते हैं, और ये और मैं बहुत बदमाशियां कर ली थी, और मैंने कहा कुछ करने को रहा भी नहीं है, मैं क्या, तो फिर मैंने कहा भाई मैं अच्छा ठीक है मैं क्या करूं फिर, तो नहीं ऐसे तो मुसलमान हो जाओ तो क्या सब खत्म हो जाएगा? बोले ठीक है तो फिर मैं मुसलमान हो जाता हूँ, क्या इसमें फर्क पड़ता है? एथीस्ट तो मैं था
मुसलमान हो गया। बोले फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? बोले जब मैं मुसलमान हो ही गया हूँ और इसमें कोई नुकसान भी नहीं, तो मैंने कहा मैं खिदमत करता हूँ उनके साथ मिलकर। वैसे ही मैंने जिंदगी में गया, मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन, मुझे पता नहीं मेरी माँ कौन, पैसा भी नहीं है मेरे पास, तो मैं सब कुछ बेच जाके यहाँ आ गया हूँ। तो मैंने यहाँ क्या करना है, पढ़ूंगा कुछ अरसे तक यहाँ पर और उसके बाद तबलीग पे निकल जाऊंगा। ये करो, कौन सा डिस्कोर्स किया उसने? अब आप करोगे नहीं, जो तरीका बहुत अरसे से इख्तियार किया गया वो सब इररिलेवेंट है। साइंस की बुनियाद पर जो जहन मुतवज्जे होगा वो दुनियादार जहन होगा, मुमकिन नहीं है कि वो दीनदार जहन मुतवज्जे। साइंस की बात की तरफ पलटता है दुनियादार आदमी, दीनदार आदमी कभी नहीं होगा। पता नहीं क्या डिस्कवरी हुई, तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या है? मैं आज हूं कल नहीं हूं। एक आदमी कहे नहीं देखो इसमें इलाज हो गया, इलाज दरियाफ्त हो गया, अब ये कि मेरे बच्चे पोलियो के खतरे पिलाऊंगा, ये वो, तो दुनिया में वो तरक्की करेंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, ये वो फला, बिल्कुल आपका डिस्कोर्स बदल जाता है। रिलीजन की तरह जब भी कोई आदमी आता है वो आदमी नहीं होता जो दुनिया के बेनिफिट्स को ज्यादा वैल्यू कर रहा होता है। और आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक आदमी को, कन्वर्ट का मतलब ये कि उसकी पूरी लाइफ वर्ल्ड को अंडू कर दे। तो आप कहें देखो तुम्हें अपनी लाइफ वर्ल्ड को अंडू करने की जरूरत ही नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह ही कहीं तो है, ये आप कर रहे हैं,
इसीलिए कन्वर्जन भी नहीं हो रहा।
तुम जैसे ही तो हो, बल्कि हमने ही तो ये सारी बदमाशियां तुम्हें दी है। फिर ये कन्वर्ट मुझे जरूरत क्या है होने की, मैं बस एक अच्छी डिसेंसी के तौर पर, जैसे रोज आखिरी जमाने में मरने से पहले मुसलमानों के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ, ईरान भी आया वो दो बार, तो यहां भी गया, क्या कहते हैं, तो रोज जो है वो कहता था कि भई ये जो मुसलमान है वो डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटीज है, उनमें हायरार्की है, सब बराबर नहीं होते, जो मुत्तकी नेक होगा वो ज्यादा बड़ा होगा और हायर, लेकिन ये डिसेंसी है, ये डिसेंट है। उसने आखिरी लॉ ऑफ द पीपल में अमेरिकन्स को कहा ये नहीं करो तुम, ये लिबरल नहीं है लेकिन ये डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटीज है, डिसेंसी है इनके अंदर, तो ये लिबरल नहीं है लेकिन ये डिसेंट है। तो तुम्हें कोई कह देगा हाँ डिसेंट लोग हैं ये, वो उसको सूट पहनता है, टाई पहनता है, टोपी लगाता है और अच्छा आदमी है, उसको नुकसान किसी को नहीं पहुंचा, डिसेंट आदमी है। और ये इसके बाद उसमें इसका मतलब है, पहली बात कि साइंस की बुनियाद पर ही तो हमने तुम्हें तब्दील किया और साइंस ही हमारे दरमियान कॉमन मीटिंग प्वाइंट है, तो पहला उसमें तो ये साइंस के मैदान में तरक्की होती रहनी चाहिए, ये है ना, साइंस की बुनियाद पे तरक्की होती चाहिए, साइंसी उलूम में रोज और बरोज और तरक्की होती चली जानी चाहिए। तो साइंस की दायरे में रोज बरोज तरक्की होते रहने के नतीजे में क्या मजहब के करीब लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये है बुनियादी उसूल, बुनियादी सवाल कि मैंने जो काम किया है उसके नतीजे में जिस जो चीज निकल कर आ रही है उसके नतीजे में क्या ज्यादा लोग रिलीजन की तरफ आएंगे या रिलीजन से ज्यादा लोग साइंस की तरफ जाएंगे। सवाल यह है क्या मजहब की तरफ से साइंस की तरफ इसका बहाव बढ़ेगा या साइंस से मजहब की तरफ बहाव बढ़ेगा।
सर इसमें दो चीजें हो जाती हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो खुदा की बात को पहचानने लगते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी है वो तो दूर हो जाता है, क्योंकि जब उसके पास टेक्नोलॉजी आती है मटीरियल फॉर्म में तो वो खुदा से दूर हो जाता है।
नहीं, और मसला ये है कि साइंस आपको दुनिया को बरतने का
नहीं, ये जो साइंटिस्ट जो है वो खुदा के करीब कैसा जाता है
जरूरी नहीं है,
मतलब जो मतलब एक साइंटिस्ट की जो इस वक्त तादाद है दुनिया के अंदर तकरीबन 50 लाख से ऊपर है, मतलब तो जो कन्वर्जन हुए हैं साइंटिस्टों के जिन्होंने कुदरत और फितरत को बड़े करीब से देखा है,
हाँ।
उनकी ज्यादा तो 0.00 और कोई ऐसा मतलब साइंटिस्ट नहीं है कि जिसने दुनिया को छोड़ दिया और खुदा को आने के बाद गया, मतलब नो वन अवेलेबल इन द हिस्ट्री।
सही है,
तो मेरे ख्याल में तो आदाद शुमार की बुनियाद पर भी ये राय जो है ठीक नहीं है मतलब
ठीक नहीं बिल्कुल जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब
ये तो परवेज साहब का चल रहा है मतलब परवेज साहब और मतलब अल्लाह में अगवा लेते ख्याल ये है कि कुरान के अंदर जो उलमा की सलाह है वो ये सब नहीं साइंटिस्ट हैं, ये जो है ये खुदा को देखते हैं करीब से और ये तो असल आलम है मतलब और ये खुदा को पहचान लेते हैं लेकिन पहचानने के बाद ये तब्दील नहीं होते
पहचान ले
तो लोग तो बुनियादी तौर पर रैशनल बींग ही होते हैं वो तो मतलब उनके ज्यादा और मजबूत दलील उनके पास आती है तो फिर वो कन्वेंस से हो जाते हैं
बिल्कुल सही बात।
लेकिन हमें ये मतलब जो आपने गुफ्तगु की है मतलब ईमान वगैरह की इससे तो ये मतलब ये कि यानी पोजीशन जो है मतलब आती है कि मतलब ईमान का आपने कहा कि भाई उसको अपना मतलब ईमान ठीक करना चाहिए ये वो अपना तो मतलब है कि इस पूरे डिस्कोर्स के अंदर रैशनैलिटी और मतलब आर्गुमेंट वगैरह कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करते
नहीं नहीं रैशनैलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है लेकिन सवाल ये है कि आप अपना आर्ग्यूमेंट जो निकालेंगे उससे जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे वो तो उसका प्रेमिसेस तो कनेक्ट वेल कनेक्टेड होने चाहिए ना। आप एक आदमी से कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुम अपने रिलीजन पर कायम रहो मैं अपने रिलीजन पर कायम रहूँ क्या मतलब इसका इसका मतलब है इससे कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो रहा ना। अगर तुम सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करते हो तुम उसे जहन्नुम में के हवाले कैसे कर सकते हो और अगर तुम उसको जहन्नुम के हवाले कर सकते हो तो फिर तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत कैसे करते हो तुम जो दोनों पैराडॉक्सिकल सिचुएशन तो मुमकिन ही नहीं है। और अगर तुम्हारे लिए इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होने वाला है या तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए रिलीजन इररेलेवेंट है और रिलीजन अगर इररेलेवेंट है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते अपना रिलीजन क्या फर्क पड़ता है
इलाजिक के साथ तो आदमी एक ताल्लुक है ना मतलब अगर छोड़ना भी चाहे तो वो तो नहीं छोड़ सकता ना मतलब जो अपनी हिस्ट्री और अपनी कल्चर और अपनी स्पेसिफिकेशन जो है ट्रांसफर तो नहीं कर सकता आदमी
मतलब अब तो जो कल्चरल रिलेटिविज्म का जो जमाना है वो ये कहते हैं कि मार्केट कल्चर ने एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड कर रही है जिसमें किसी कल्चरल शिफ्ट हो जाती है विद द शिफ्ट ऑफ योर कैपेसिटी टू अक्यूमुलेट कैपिटल डिमांड जो कर्व होता है आपका उसमें शिफ्ट हो जाती है ना जैसे आपकी इतनी सैलरी अब सैलरी आपकी बढ़ गई तो आपने शिफ्ट कर गए और शिफ्ट कर गए तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है आपकी इसके नतीजे में आपकी कल्चरल लाइफ तब्दील हो जाएगी। अगर फर्ज किया कि एक आदमी की एक महीने में 1 करोड़ रुपए आमदनी है तो वो तफरी करने के लिए साहिल क्लिफ्टन पे जाएगा जहाँ पे दुनिया जान के लोग आ रहे हैं लफंगे लुच्चे कोई करतब दिखा रहा है कोई झिंडेरिया गा रहा है कोई अपना तूफाने बच्चन वहां जाके बैठेगा ये उसके मुमकिन ही नहीं है उसके लिए तो वो जाएगा क्लब्स की मेंबरशिप लेगा क्लब कल्चर अलग होगा क्लब कल्चर जो है वो डिफरेंट किस्म की डिमांड पूरी करेगा लेकिन जब 1 अरब हो जाएगा तो फिर वो जाके किसी और इंटरनेट
यानी कि 6 अरब इंसान जो है मतलब तो उनकी जो मतलब वो है क्वांटिटी उसमें तो ये जो मतलब इकोनॉमिक्स के ग्राफिंग का मसला है ये यहाँ पे तो अप्लीकेबल नहीं है ना मतलब ये जो शिफ्टिंग होती है 1 करोड़ की तरफ या 10 करोड़ ये तो मतलब 0.0000 के अंदर होती है मतलब वहां पे तो ये नहीं होती ना शिफ्टिंग ये तो वो तो हमें बताते हैं मतलब कन्विंस करने के लिए टूवर्ड कैपिटलिज्म जो है मतलब एक्चुअल का ऐसा नहीं होता। अच्छा और अगर हो भी जाए तो भी अगर एक शराबी कबाबी भी हो इवन उसकी अपनी जो मतलब यानी उसका माँ के साथ अपना एक ताल्लुक है अपनी तारीख के साथ ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं करता है मतलब जहूर या मतलब आयगन जैक्सन था उसने जाकर दुबई के अंदर मस्जिद बना दी मतलब ये तारीख को साथ चलती है ना मतलब तारीख और तहजीब और सकाफत जो है कैपिटलिस्ट होने के बावजूद सलाह होने के बाद अबेंडन तो नहीं हो जाती
सही है तो इससे क्या इम्प्लाय कर रहे हैं कि वो रिलीजन क्यों छोड़ दे ये रिलीजन क्यों ना छोड़ दे लोग छोड़ देते हैं ना रिलीजन माँ को छोड़ देते हैं बाप को सब को छोड़ देते हैं वो कहते हैं हकीकत तो यही है कि मैं खुदा मुझे छोड़ने वाले है नहीं मेरी माँ नहीं समझ रही तो ठीक है मैं माँ को छोड़ देता हूँ क्या करूंगा उसको क्या कर सकता हूँ उसका मैं छोड़ देता हूँ माँ को और इसको भी छोड़ सबको छोड़ देता हूँ। रिलीजन तो तुमसे एब्सोल्यूटिस्ट डिमांड करता है तो दुनिया में रिलीजन होता ही एब्सोल्यूटिस्ट है। आप अगर कोई आदमी कहता है रिलेटिविस्टिक एटीट्यूड इख्तियार करेगा एब्सोल्यूटिस्ट प्रिंसिपल के साथ
तो वो तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देगा, बड़ी खतरनाक किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करेगा। वो कॉन्ट्रडिक्शन जो होगी उसके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। और जो आदमी एब्सोल्यूट रिलीजन को एब्सोल्यूटली प्रैक्टिस करता है, ये मुमकिन ही नहीं उसका इम्पैक्ट ना हो। ऐसा इम्पैक्ट होता है उसका अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर कि वो लोग मुतासर होना शुरू हो जाते हैं।
वट एवर द रिलीजन बी, देख लें
रिलीजन
यहाँ देख लें इस्लाम
में। नहीं, आप यूरोप वगैरह के अंदर एक आदमी है जो ऑनेस्ट है, जो हलाल कमाता है, जो हराम नहीं कमाता, जो शराब नहीं पीता वो नहीं पीता, और जो कहता है उसके इर्द गिर्द के लोग मुतासर हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लोग। हालांकि पूरी निजाम जिंदगी जो है वो लिबरल है।
फिर एक प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि देखिए एक सेंटर और दूसरा सेंटर जब तक एक दूसरे से दूर है तब तक तो ये सेंटर एक अल्यूरन सेंटर के तौर पर अपने गिर्द उन लोगों को जिनका जिनका रूहानी मयार जो है वो इस लेवल का नहीं है, सेंटर के लेवल का नहीं है, अपनी तरफ खींचेगा। मगर जब ये दोनों सेंटर आपस में करीब आ जाएंगे तो ये लोगों के बीच जो है वो एक पुश एंड पुल शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बुद्धा, फॉर एग्जाम्पल इमाम खुमैनी, ठीक है। अब ये एक सेंटर है, दूसरा सेंटर है, खींच रहे हैं इन बिटवीन द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन बिटवीन दैम, वो तो फोर्सेस से।
देखो पहली बात तो ये कि ये जो मैंने डिस्टिंक्शन बताई है दोनों की, ये बुनियादी तौर पर थियरी को समझने के लिए, बुनियादी तौर पर तो बताए ना फलसफे का स्पेस कहाँ है। फलसफा क्या, फलसफा डिपार्टमेंट के अंदर होता है, कहाँ होता है फलसफा? या मजहब कहाँ होता है? मस्जिद के अंदर होता है,
पूरी सोसाइटी
इन योर कॉन्शियसनेस होता है भाई, इट्स इन योर कॉन्शियसनेस। तो ट्विस्ट ही तो करना है तुम्हें, यही तो है सब, या यहाँ है सब। तो चलो भाई आ जाए यहाँ चल के बैठते हैं, ये आ गया फलसफे कमरे में, अब फलसफा शुरू हो जाए उसका। चले यहाँ से निकल गए, चले भाई यार मस्जिद के अंदर आ गया, मजहब मजहब मजहब, ऐसा नहीं है। यहाँ है और यहाँ पर ऑर्डर है, बस उस ऑर्डर को तब्दील करना, उलट दो उस ऑर्डर को।
सर दूसरी तरफ से भी तो यही दावत है ना, वहां पर भी वो कह रहा है, उसकी पोजीशन भी यही है कि आई एम एब्सोल्यूट, आई एम एब्सोल्यूटली ट्रू, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा
है। आमतौर पर ये है कि जो रिलीजियस नहीं होते वो एब्सोल्यूटनेस का दावा आमतौर पर नहीं करते, कमजोर रखते हैं अपनी पोजिशन, इसीलिए लोग रिलीजन की तरफ वालेहाना आ जाते हैं, वालेहाना बड़ी तादाद में। आप देखो इंडिया के अंदर हिंदुइज्म में जब ये हुआ तो हिंदुओं ने कहा कि भाई एक खास किस्म का उन्होंने छुरा बनाया, ये तीन धारी है, जिस तरह त्रिशूल होता है इस तरह का है वो छुरा मुसलमानों को मारने के लिए, और एक उसमें वो है मेंबरशिप है उसमें, क्या तुम्हारे ख्याल में जाहिल लोग हैं सब, आर्टिस्ट तक है उसके अंदर, साहबी तक है उसके अंदर, जो भी आता है वो देता है, वो उठाता है सबके सामने दिखाता है फिर जाता है। क्या कल कभी हिंदुइज्म पे आ जाए तो मैं दिफा करूंगा हिंदुइज्म का अपनी जान देकर भी, उसके लिए बहुत फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे होते हैं। अब हम इसे कहते हैं मजहबी जुनूनियत, जुनूनियत मजहबी जुनूनियत हम इसे कहते हैं। कॉन्सर्ट जब हो रहा होता है उसमें क्या हो रहा होता है, कॉन्सर्ट जब हो रहा होता है तो सब लोग जो कॉन्सर्ट में जाते हैं शिरकत करने के लिए क्या करने आते हैं, म्यूजिक सुनने आते हैं। वो आदमी गाना ही गा ही नहीं रहा होता, गाना थोड़ी गा रहा होता है, टेप रिकॉर्डर पीछे सीडी जा रहा, वो मुंह चला रहा होता है और जो कह रहा होता है सब लोग कर रहे होते हैं, वो बड़ा रैशनल काम हो रहा होता है। या फुटबॉल का मैच जब देखने जा रहे होते हैं कि जब वेव चलती है तो सब लोग उठना है तो वो भी उठ जाते हैं, सब उठ जाते। तो ये क्या है, तो मसला ये होता है कि बहाव के साथ जुड़ना और लहर के साथ बहना और यू नो आपकी इमोशंस को जितना केटर करने की सलाहियत रिलीजन में होती किसी नजरिए के अंदर नहीं होती, किसी नजरिए का।
हिस्टोरिकली बताइए,
हिस्टोरिकली नेशनलिज्म ने मुकाबला किया है किसी का, या सोशलिज्म ने मुकाबला किया है, सेंटिमेंट्स होते हैं उनको जो
قوتیں قابو کرتی ہیں وہ نیشنلسٹ ہوتی ہیں یا سوشلسٹ ہوتی ہیں. چلو سوشلسٹ اب بڑے مٹیریل ٹائپ کے ہو گئے, نیشنلسٹ ہوتی ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, ریلیجیس کلیکٹیوٹی کو نیشنلزم کھا جاتا ہے یا نیشنلسٹ کلیکٹیوٹی کو ریلیجن کھا جاتا ہے. تو یہ پوری کے پورے انسان کو قبول کرتے ہیں, اس میں انسان بھی ہوتا ہے, اس کا نفس بھی ہوتا ہے, اس کا جسم بھی ہوتا ہے, اس کی زبان بھی ہوتی ہے, اس کا کلچر بھی ہوتا ہے, اس کا ٹریڈیشن, پورا کا پورا اس کے اندر جاتا ہے. وہ تو ماس کنورژن ہوتی ہے بڑی تعداد.
ہسٹوریکلی ایبسولوٹ ریلیجن آبویسلی ایبسولوٹ ریلیجن از ایبسولوٹ. ون ریلیجن ورسز اندر ریلیجن جب کانفلکٹس ہوئے ہیں, جب بڑی بڑی وارز ہوئی ہیں, تو اس میں فیصلہ بس صرف طاقت کی بنیاد.
یہ عام طور پر ٹھیک بات نہیں ہے کہ ریلیجن کے اندر وار کی بنیاد, یہ بنیادی طور پر ایک کرونالوجیکل اور انٹلیکچل پرابلم ہے, ہسٹوریکل ہے, کہ وہ ریلیجن نے انہوں نے کہا تم سب یہ مذہب اختیار کر لو, کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے, اور اس پہ لڑائی شروع. ایسا نہیں ہوتا, بہت کم ایسا ہوا ہے ہسٹوریکلی. ایسا نہیں ہوتا جنگ کی صرف یہ بنیاد کہ وہ اس بنیاد پر لڑائی شروع. ایک ریلیجن
ماڈرنسٹ جو آج کل آرگیومنٹ دیتے ہیں, ماڈرنسٹ
بہت سارے
نہیں, ماڈرنسٹ جو آج آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ اسلامسٹوں نے اکثر ایسا کیا کہ جی یا تو جنگ کرو یا جزیہ دو. تو یہ اس کی
روشنی سب ساری
جنگ کرو یا جزیہ دو.
اسٹیٹ جزیہ کا مطلب کیا ہے, وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, اور اس سے دو فائدے ہوں گے. دوسرا یہ کہ یہاں سے ہم پر حملہ نہیں ہو سکے گا, یہاں سے ہمارے پر حملہ نہیں ہوگا. تو اس میں کیا اسٹیٹ تھیوری میں کیا پرابلم ہے, آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. اور اگر بعض جگہوں پر یہ ہوا کہ وہ ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, ان کا جزیہ واپس کیا مسلمانوں کے واسطے کہ بھائی ہم ہمارے پاس ابھی صلاحیت نہیں کہ پروٹیکٹ کر سکیں آپ کو, یہ ہم نے جزیہ کے طور پہ لیا تھا, یہ واپس لے لیا تھا.
آٹھن میں ہوئے, آٹھن جو ہے مطلب اس نے جو ہے سپہ سالار نے ایگریمنٹ کیا کوکے سے آٹھن عطا کر لیا. تو جب وہاں پہ خبر انہوں نے بھیجی آٹھن کے لوگوں نے کہ صاحب انہوں نے ہم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر کے ہمیں دھوکہ دے کر قبضہ کر لیا. تو علی خان نے آرڈر دیا کہ بھائی آٹھن جو ہے علی گڑھ کو باہر آ جاؤ. تو فوج جو ہے پوری آٹھن علی گڑھ کے باہر آ گئی. مطلب جب باہر آ گئی انہوں نے سوچا کہ یار ابھی حملہ کریں گے بڑا خطرناک, تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان سے جو ہے ایگریمنٹ کر لو. انہوں نے دوبارہ ایگریمنٹ کر لیا, دوبارہ مطلب یہ کہ ایسا. تو مطلب خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جو ہے رومیو کے ساتھ ایک عہدہ تھا, تو عہدہ جو ہے اختتام پر تھا بالکل, تو ختم ہونے میں تین چار روز باقی تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا سلمان فوج کو کہ وہ تیزی کے ساتھ جو ہے مطلب روم کی سرحد پر پہنچ جائے, جیسے ماہر کی تاریخ ختم ہو حملہ کر دو. تو اسی وقت ایک صحابی تھے وہ وہاں پہ پہنچے لشکر میں, اور انہوں نے حضرت امیر بھائی کو حدیث بتائی کہ یہ جو ہے دھوکے کے دل میں آتا ہے, جب معاہدہ ہوا تو معاہدہ پورا ہونے دیں, اس کے آج جو ہے مطلب حضرت ماہیا نے فوج جو ہے واپس کھلوا لیا. ایسا نہیں ہوتا مطلب تاریخ کے اندر.
مسئلہ یہ ہے کہ عام طور یہ یورپین ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کیتھولکس نے کیتھولکس نے پورے پورے علاقے ختم کر دیے.
انڈرسٹینڈنگ از لائک آن وٹ گراؤنڈ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کریں گے. اب دیکھیے نا, کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ کیا میدان جنگ اس بات کا وہ کرے گا کہ میری تلوار چونکہ آپ پر حاوی ہے تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کنورٹ
ہو گئے. ایسا نہیں,
یا پھر
کنورٹ کبھی نہیں کرتے تلوار کی بنیاد پر, کبھی کنورٹ نہیں. انہوں نے کہا جزیہ دے دو تو اسٹیٹ اتھارٹی رول ہمارا چلے گا, آپ کو جو ریلیجن فالو کرنا ہے کرو آپ فالو. صرف جو یعنی کہ جو یمن وغیرہ کے اندر مارا ہے وہ تو مرتد ہو گئے تھے, اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو سزا ملے گی, اور اس میں بھی ایک آدمی جس نے اذان دے دی تھی خالد بن ولید نے اسے ختم کر دیا. تو حضرت عمر نے آنے کے بعد گراؤنڈ کیا خالد بن ولید, ایسا آدمی
یہ پوائنٹ بھی ماڈرنسٹ اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر مرتد ہو رہا ہے تو ہونا دو نا, یہ ہے نا
آرگیومنٹ. دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں تو بتاؤں کہ پہلی بات
تو میں ایک منٹ سے پہلے کے آگے بڑھیں, یہ جو مطلب ماڈرنسٹوں کا جو پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اسے جزیہ لیا جاتا ہے. سوال یہ کہ ماڈرنسٹ کرنٹ ٹائم کے اندر اگر کوئی ہیومن بینگ ہے اور اگر وہ ہیومن رائٹ کا انکار کر دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
सही बात,
मर्डर है, मर्डर है बिल्कुल। अगर कोई आदमी ह्यूमन राइट को नहीं मानता तो उसको इस तरह खत्म कर दिया जाए तो एक ही मतलब
ड्रोन फायर नहीं। दूसरी बात ये होती है, दूसरी बात ये है कि बुनियादी तौर पर रिलीजन आप जब कोई इख्तियार करते हैं तो पहली बात मैं बता चुका हूं कि हर रिलीजन बराबर स्टेटस का नहीं होता। जिस रिलीजन को आप कह रहे हैं वो रिलीजन है जो आपकी सेल्फ का रियल मैनिफेस्टेशन है, और जब आप कहते हो कि मैं इस रिलीजन उस पर आकर आप कहते हो अब मैं ये इख्तियार नहीं करता हूं, तो इसका मतलब है तुम किसको डिनाई कर रहे हो, सेल्फ को डिनाई कर रहे हो। तो बताने का मतलब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि वो उसी जमाने के लिए था, अब तो सजाएं नहीं है उसकी, तो जाहिर है कि ये तो बुनियादी तौर पर जो पोजीशन है इसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जो हमारा तो इल्म इतना नहीं है कि हम उसके बारे में, लिहाजा जो हमारे बड़े कहते हैं हम तो वो पोजीशन इख्तियार करेंगे, हम तो तकलीद करेंगे उसकी। लेकिन ये कि हुक्म तो जाहिर है कि वही लगाएगा जिसका इल्म है, तो उन्होंने तो ये हुक्म लगाया जो भी हुक्म लगाया, लेकिन उसकी दलील जो मैं समझता हूँ वो ये कि आप वो नहीं रहे जो आपको होना चाहिए, आपने अपने इंसान होने की नफी कर दी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स कहता है कि जब तुमने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया तो तुमने अपने ह्यूमन होने की नफी कर दी, लिहाजा तुम्हारे ह्यूमन राइट गारंटी नहीं किए जाएंगे, इसी तरीके से तुमने अपने ह्यूमन होने की नफी कर दी उसको इख्तियार करने के बाद जिसे तुमने इख्तियार करना चाहिए। और कितने लोग देखो एक बार बताऊं, आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जब हम प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा जब हो जाएगा तो देखेंगे, जब हो जाएगा तो देखेंगे ना। मतलब ये एक आदमी अगर अपनी माँ से शादी कर ले उससे जो उसकी औला उसका वो क्या रिश्ता होगा भाई, जब होगा तब देखी जाएगी, अभी तो कोई नहीं इतना बदमाश हुआ, उनकी शादी आपस में हो सकेगी नहीं, और क्या होगा फिर क्या, तो ये जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ, तो जब होगा तो हम उसे इंगेज कर लेंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके अंदर कई बड़े लोग होंगे जो इश्तेहार करेंगे, एक आदमी इश्तेहार नहीं करेगा, कई बड़े लोग होंगे जो बैठे होंगे, दिमाग होगा, और नहीं कर सके उससे बेहतर आदमी आएगा, वो नहीं कर सके उससे बेहतर आदमी आएगा, और आपको इस बुनियाद पर सजा दी जाएगी कि आपने ये जो किया इश्तेहार इसकी बुनियाद पर आपका ख्याल क्या खुदा के इरादे को पहचानना था, या आपने कोई दुनियावी फायदा लेने के लिए आपने ये फैसला कर दिया। तो बुनियादी तौर पर जब प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी तो इस्लामी जिंदगी मौजूद ही नहीं है, अगर वो होती तो उसको इंगेज करते और उसके में जो नकायस होते उसको दूसरे लोग पूर करते चले जाते, ये थोड़ी होगा कि इस्लामिक फ्रेमवर्क आ जाएगा कुल दुनिया जन्नत बनाए, सब शरीफ के बच्चे हो जाएंगे, कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा, सब शराफत जाएंगे, शराफत जाएंगे, सब सबकी इज्जत करेंगे, कोई रिश्वत नहीं लेगा, ऐसा थोड़ी होगा।
दूसरी बात है मतलब थ्योरेटिकल है ना, ये तो इतराज वो है जो थ्योरेटिकल उठाया जाते हैं, ये मतलब बुनियादी बात,
प्रैक्टिकल जब जवाब दो तो आप कहते हो ये तो प्रैक्टिकल हो गया। आमतौर पर मॉडर्निस्ट होगा जब जवाब दो तो भाई देखो ये इस आदमी को तुम इतना बुरा कहते हो, इस आदमी को ये पोजिशन है, ये लेता है ये पोजिशन इस मामले में, ये तो आप एक आदमी की बात कर रहे हो भाई, एक आदमी की तुम भी तो एक ही आदमी की एक ही किस्से की बात कर रहे हो, तो एक ही बात बताऊंगा ना, सारी जिंदगी वो यही थोड़ी करता रहेगा, उसके सामने जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को उसने एड्रेस किया जो उसकी सलाहियत थी, और अगर वो खुदा के इरादे के करीब गया तो उसकी बुनियाद पर उसकी वक़्त बढ़ेगी, और अगर वो खुदा के इरादे से दूर जाता गया उसकी वक़्त कम हो जाएगी, वो जाएगा अपनी खबर में जवाब देगा।
नहीं इसमें हमें भी मतलब जो बुनियादी है ना, मतलब जो उसके पीछे जो यानी थ्योरी वो पेश करते हैं वो ये कि जो इस्लाम जो फैलाई है वो
मार पिटाई
से, लिहाजा लोग जो है अच्छा फिर अब आ गए मुसलमान हो गए वो छोड़ना चाहते हैं तो इस खतरे से नहीं छोड़ रहे, इस वजह हालांकि उसूली बात यह कि 1924 में खिलाफत इस्लामिया उस्मानिया खत्म हो गई, 1924 से 2008 है, मतलब यानी जो है 70-80 साल का अर्सा है, ये बताएं कि 80 साल के अर्से में दुनिया के कितने मुल्कों में कन्वर्जन हुआ है इस्लाम से ईसाइयत और यहूदियत या हिंदू मत की तरफ, एक कन्वर्जन कोई मास कन्वर्जन बताया जाए, अगर वो सब खौफ से जो है खिलाफत इस्लामिया के खौफ से अगर वो मुसलमान थे तो 80 साल का अर्सा है, और इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है सऊदी अरब के अंदर भी कि अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसको जो है वो कोई कत्ल कर सकता हूं, तो क्यों नहीं हो रहा कन्वर्जन, मतलब आप वो इशू बनाते हैं कैलकुलेट करके और आर्टिकल
आपको बैकवर्ड
बता रहे वो साहब देखें बड़ा खतरा है
इन ऑन टू कहते हैं हम तो मार डालेंगे वो देखा कितने बदमाश
इन ऑन टू रीच द स्पेशल कॉन्क्लूजन अच्छा क्या हिस्टोरिकल
आप भाई ने मतलब एक मतलब जवाब दिया था कि स्टूडेंट ने जो है सवाल किया था मतलब कि जी वो इस्लाम के अंदर जो है वो औरतों को आंधी बना लिया जाता है अब मैंने कैसे से कहा कि भाई बना लिया था ये तो एक अलग डिबेट है मतलब ये बताओ कि तुम्हारी किसी बहन बेटी भाई किसी खानदान में किसी को बनाया गया है मतलब मौजूद है इस वक्त क्या मसला है क्या है डिस्कशन इस कोर्स की बात हो रही है उस इस कोर्स के होल में से एक जो है मतलब सेक्शन निकालकर लाकर एक मसले के तौर पर पेश करके ये मसला है मतलब पैदा हो गया
मसला पैदा हो मुसलमान जो है बांधी बना लेते और बस बाकी सब ठीक है भाई बस बांधी तो थी फिर तो ठीक नहीं फिर इस्लाम फिर तो इस्लाम ठीक नहीं हो सकता औरत को बांधी बना लेता है तो बड़ी गलत बात है बहुत गंदी बात है और ये कि सहाबा ने भी मुमकिन नहीं है तो फिर इस्लाम को ही रिजेक्ट कर देते
फिर उसने कहा अयूब खान मतलब अयूब खान ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर किसी स्पेशलिस्ट की ने जिसके सामने तकरीर की तो उसने बताया कि हजरत आरिया पतिया जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पौंडी थी तो वो आए यहाँ पर वापस गए तो इदारे तहकीकात इस्लामी कराची का ऑफिस में अब रिश्ता वैसी कराची के बाइस में कुछ शेख सदर थे वो उनके बाद उनका वो उसके जो है मतलब आगे कुछ उसने पढ़ा भी था अयूब खान ने उनसे गाचका प्रेसी से कि भाई मैं वहां गया था ऑस्ट्रेलिया और मैंने ये सुना है कि ये दूसरा से लंबी ये काम करते थे तो उन्होंने नहीं बिल्कुल नहीं करते थे आगे मुझे बताओ सबूत दो मतलब मैं तो उससे फिर से बात करूंगा उन्होंने फौरन इजलास हमारे घर के पास ये फारान सोसाइटी में उसका अफसर था मतलब इदारे थे फौरन शाम को इजलास तलब किया अच्छा अपना मुखड़ा हसन मुसन्ना तजी साहब एक स्कॉलर थे वो भी हमारे पड़ोसी थे और एक और साहब थे फौरन अब्दुल कुद्दूस हाशमी वो ही पढ़े थे उन्होंने बुलाया भाई अयूब खान ने कहा है कि ये जो है रसुल्ला की आंधी नहीं थे तो बड़ी शर्मनाक बात है तो उन्होंने नहीं बिल्कुल नहीं थी उन्होंने फिर बताओ तो सब जो है वो सारे बैठ गए वहां पर और तकरीबन जो है तीन हफ्तों में एक उन्होंने किताब तैयार कर दी वो है अब सिर्फ हमारे पास अगर किसी को पढ़नी हो तो पढ़ सकते उन्होंने लिया के पेश कर दी उसको अच्छा बस मेरे अपना नाम हो गया ऐसा पराण है मतलब सारा ये जो है होता रहता है मतलब
हाँ। अच्छा हिस्टोरिकली
आ देंगे भाई
मुझे जरा जाना है मुझे जरा काम
जी ठीक
ठीक है सारे दस वो साढ़े चार बजे ठीक है
तो ये जो है मतलब कि यानी कि इस तरीके से
कल फिर आ जाओ
तो इसको है ना लगा इस तरह के सवाल जो है ना मतलब और इसके लिए आपको जो किताब पढ़नी चाहिए फंडामेंटल किताब है वो है मौलवी चिराग लीजिए उसकी एक किताब जो थी मतलब अंग्रेजी में उसने लिखी थी मतलब और उसमें उसने इस तरह के इतराजात और इन इतराजात में 100 साल के अरसे में कोई इजाफा नहीं हो सका मतलब यानी अगर आप चिराग अली की किताब पढ़ लें तो जावेद खामनी के एतराजात डॉक्टर जावेद इकबाल के एतराजात शहीदुद्दीन खान के एतराजात कोई वो उस एतराज में एक जो है मजीद एतराज का इजाफा नहीं कर सकते यही एतराज है टोटल जो है मतलब लेकिन जब एतराज को आप जो है टोटलिटी के अंदर रखकर देखते हैं तो एतराज की पोजीशन कुछ और हो जाती है और एतराज को आप मिसाल के तौर पर एक बड़ा एतराज है कॉमन जो है मतलब कि जी मुसलमानों के यहाँ ये है कि औरत की जो है जिंदगी और आजादी महफूज नहीं है किसी वक्त भी उसका इस्तेमाल घूम गया तो उसने जो है तीन तलाकें कह दी तो औरत की जिंदगी तबाह हो गया है ना बहुत बड़ा एतराज है सवाल ये है कि इस्लामिक सोसाइटी में तलाक का इशू कितना है और उस सोसाइटी में जहाँ पे तलाक पर पाबंदी है बहुत सख्तियां हैं उसमें कितना रेशो है आपके आसपास और मतलब जो खानदान में कितने लोग तलाक होते हैं अगर इतना डायरेक्ट ओपन तो है मतलब तो इस ओपननेस की वजह से तो हर घर में हर रोज सुबह शाम तलाक होनी चाहिए हर गली से तलाक की आवाजें आती है कितनी आवाजें आती है मसला ये कि आप होल में से जब एक चीज को निकाल देते हैं मतलब आप कानून निकाल लेते हैं कानून जो है वो होल का यूज होता है अपनी रूहानियत के साथ जो है चलता है मतलब मेरे दोस्त हैं उन्हें खाने पीने का बहुत एक शौक है तो वो मुझे एक दिन कहेंगे अरबी की सुनाई जाए मतलब तो कहना से एक बात ही मैंने आगे भी मतलब ऐसा कर देंगे यार आज जो है सारा खाना खाते हैं कहने क्या मतलब मैंने कि इसका जो है रायता बड़ा मजेदार होता है वो आता है 40 रुपए का और इसके जो अफगानी जान होते हैं वो ही बड़े अच्छे होते हैं 10 रुपए के तो ये है कि हम 50 रुपए में खाना खा लेंगे कहने यहाँ पर आकर अरबी की सुनाई में सिर्फ जो है मतलब ہم جو ہے مطلب یہ رائتہ منگوائیں اور یہ افغانی نان بہن کے کوئی پابند نہیں ہے, اگر آپ یہ منگوائیں تو جب آپ کو نہیں دے گا سر نہیں, بولے سر تو کرے گا میں کھا لیتے ہیں. نہیں اس کی روحانیت ہے نا, مطلب اس ادارے میں جانے والا یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ وہاں پر جا کر ایک, ہاں حالانکہ حقیقت میں اگر آپ وہ رائتہ لے لیں اور دو روٹیاں ہیں نا پیٹ بھر جائے تو بڑا مزیدار ہوتا ہے, لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے. مطلب روحانیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ اس سے الگ ہوتی ہے, مطلب وہ خود بخود امپوز ہوتی ہے. مطلب جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا ایک قانون ہے, اس کے ساتھ ایک روحانیت ہے. قانون میں اجازت ہے کہ آپ جو ہے اللہ کسی دمے بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کی روحانیت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ اور قلب اور دماغ کو روک دیتی ہے. مطلب تو آپ جب روحانیت کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے کہتے ہیں ہاں اس سے پرکشن بڑا خطرناک ہوں, کیونکہ آپ کی اتنی انسائٹ نہیں ہوتی, نہ آپ کا اتنا علم ہوتا ہے, نہ آپ کی اتنی اسٹڈی ہوتی ہے, اور نہ آپ کا اتنا کوئی کمپیریزن ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں گے بھائی اس قانون سے کیا ہوگا. مثلا ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا یہاں پر مطلب بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا تھا کہ یہ جو ہے اشتہار جو ہے مطلب یہ جو ہے مطلب عورت اور جو ہے اسلام میں اشتہار کی جو ہے اجازت نہیں ہے, تو یہ تو جو ٹھیک بات نہیں ہے. میں نے آپ کون ہے مطلب, کہنے میں تو مرد ہوں. میں نے آپ کو اجازت ہے اسلام میں, میں نے آپ کر سکتے ہیں اشتہار, میں ہوں میں بھی مرد ہوں میں اشتہار کر سکتا ہوں. یہ مطلب کہنے میں نے تو عورت مرد کا مطلب کہاں سے آ گیا, اشتہار ایک ریسپانسبلٹی ہے بھائی, آپ اس کے مطلب اہل ہیں کیا؟ مطلب اگر آپ اس کے مطلب اہل ہی ہیں تو مرد ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے, عورت ہوں مرد ہوں. یہ مطلب چیزوں کو کیا کرتے ہیں آپس میں انٹر انگلنگ کرتے ہیں, رائٹ کی ڈبیٹ کیا آتے ہیں ریسپانسبلٹی کے اندر, ریسپانسبلٹی کا ڈسکورس کیا آتے ہیں رائٹ کے اندر, ٹیکس کی بات جو ہے مطلب رائٹ میں لے آتے ہیں, رائٹ کی بات ٹیکس میں لے آتے ہیں, کیونکہ آپ کا ڈسکورس جو ہے ہوتا نہیں مطلب, لہذا اس کی وجہ سے قانونی مسائل بات ہوتے ہیں. ایک یہ مطلب آئے صاحب جو مطلب ان کی جو بیگم تھی مطلب وہ کسی مدرسے ارے وہ تحصیل کو بنا گئی تھی, وہاں پہ اس نے اسلام کے ساتھ پڑھ لی, قانون وانون پڑھ دی, اس نے آ کر اپنے قانون اپنے شوہر کو بتانے شروع کر دی, وہ بھی یار پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی وہ میری سالہ ہے پوری اور انہوں نے مجھ کو خالہ پوسا ہے, اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اتفاق کا اصول یہ ہے کہ تمہاری ماں کی خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے, لہٰذا میں تمہاری ماں کی خدمت نہیں کروں گی. میں نے کہا مدرسے میں پڑھ کر آئی ہے یہ, اچھا ٹھیک ہے اس کو مطلب اس نے ساتھ بات کی, وہ اپنے مجھے بتانے لگی ہدایہ نے یہ لکھا ہے, شرح فقہ میں یہ لکھا ہے, اور مفتی سرور علی خان نے فتویٰ جو مجھے یہ دیا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیے آپ جو ہے نا مطلب اسلام کا ایک رول ہے, یہ قانون بھی اس کے اندر موجود ہے, لیکن یہ فل جو ہے نا مطلب یہ قانون جو ہے یہ پورا نہیں, یہ قانون اس روحانیت کے ساتھ ہے مطلب. اور میں نے کہا کہ آپ یہ سوچ لیں گے اگر آپ یہ قانونی اسلام کی بات کر رہی ہیں پھر یہ قانونی اسلام آپ کو بہت ہی زیادہ مہنگا پڑے گا, اور صرف آپ کو یہ مطلب کہیں نہیں یہ وہ فلانا ہے ٹھیک ہے. تو پھر اب میں نے ان سے اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں کھانا بھی نہیں بناؤں گا, کیونکہ اتفاق میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا بھی کھلائے. تو اس نے کہا یار میں تو جاتا ہوں ہب میں کھانا کہاں سے بنا کے دوں مطلب. میں نے اس کا بھی حل ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس میں دو طریقے بتایا, میں نے کہا ابھی اس کا قانون اسلام ہے, ابھی اس کو قانون معلوم ہو جائے گا دو دن کے اندر. میں نے کہا کہ آپ ایک کریں گے سامنے ہوٹل تو ہوں گے نا, یہ پٹھانوں کے ہوٹل ہوتے ہیں کیفے ڈی پھونس وغیرہ, وہاں سے اس کا کھانا آپ جو لگوا دیں, کیونکہ آپ کی ذمہ داری پکانا نہیں, آپ کی ذمہ داری کھانا کھلانا. اب ظاہر ہے پٹھان ہوٹل میں کیا کھانا بنے گا, روزانہ جو ہے صبح کا ناشتہ پراٹھا انڈا کیا ہے, دوپہر کو جو ہے انڈے چھولے آلو چھولے اور یہ وہ فلاں, رات کو یہ مطلب اب وہاں سے کھانا. اما کا سنا کہ اما کا میں کیا کروں مطلب, میں نے ایسا کریں گے آپ جو ہے مطلب اس کی بہن تھی یہ بات ہی مطلب وہ, لیکن وہ بہت ہی بدتمیز قسم کی تھی, اس کے دو تین بچے ہیں اس کو آپ لے آئے امی کی خدمت کے لیے وہ لے آئے. اچھا فورجی خانہ تو استعمال جو ہے ہوتا نہیں تھا, تو فورجی خانہ تو خالی تھا, لہٰذا وہ اس نے فورجی خانہ سامان لیا, کھانا وانا کمرہ ان کا الگ کر دیا گیا, اور وہ جو ہے شروع ہو گیا. اب وہ ظاہر بہن جو ہے وہ اپنے آدھے آدھے گزر مار بھی آف کر دی تھی, یہ بڑی مذہبی ہے فلائیں گے وہ, اور قبضہ ہی فورجی خانے پر. اس کے بعد جو ہے وہ آئی میرے پاس کہنے گی کہ دیکھیں جی یہ جو ہے مطلب وہ میرا اور جی خانے اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا. میں نے آپ کو تو استعمال میں نہیں ہے مطلب اصراف ہے, وہ ایک چیز استعمال ہی نہیں ہوئی, استعمال کری تو اس میں کیا آ رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گئی, کھانا وانا کھا کر جو ہے مطلب, تو اب جو ہے مطلب کہ وہ شوہر صاحب تو صبح ہی آتے تھے, اس نے فون کیا کہنے میں تو بیمار ہوں اور وہ جو ہے خزانہ جو ہے چلے آتے ہیں اب جو ہے مطلب. تو میں نے یہ کہاں لکھا ہے اتفاق کے اندر کہ شوہر جو ہے مطلب آپ کی عمارت داری کے لیے گھر کے اندر موجود ہے. میں نے کہا یہ تو قانون نہیں, اب کہہ رہی اب وہ میں تو ہوٹل کا کھانا نہیں کھا سکتی, تو اس نے جا کے کہہ رہی ہے اس کو परहेजी खाना पका दो, परहेजी होटल का खाना तो वैसे ही परहेजी होता है, जब अकली परहेजी खाना आने लगा तो उससे खाना भी कहने इनकी जिम्मेदारी को मैं खाना बना कर दें। मैंने क्या लिखा है चिका के अंदर, ये है कि खाना खिलाना जिम्मेदारी। मतलब जब आप कानून में जाते हैं ना, मतलब तो उसको आप रूहानियत से अलग कर देते हैं, जब आप उसको रूहानियत से अलग कर दें तो मसले पैदा होते हैं। यार इस्लाम पर जितने भी इतराजात होते हैं उनको जब आप पूरे होल में रखकर लिखेंगे तो उन इतराजात की कोई हकीकत नहीं, लेकिन होल में रखने की फुर्सत नहीं होती। आप उसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करके फिर जब आप जब उसे देखते हो कहते हैं हाँ यार ये तो बड़ा मसला है, आप खानदी साहब ठीक काम करते हैं, मतलब हमेशा होल में से निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके उसको चेक करते हैं, कहते हैं हाँ जी ये ठीक है, ठीक कर दिया।
हर उसूल को सेग्रीगेट करके जब भी निकाला जाता है उसकी वो
इस्लाम जो है, मतलब इस्लाम एक जो है, मतलब सबसे पहले वो एक अकीदा है, उसके बाद वो एक इल्मियत है, उसके बाद वो एक ईमान है, उसके बाद उसकी एक रूहानियत है, मतलब उसके अंदर एक कानून भी है। कानून जो है पूरे होल का एक हिस्सा है। अगर आप उस पूरे होल में से कानून ले लें, या सिर्फ रूहानियत ले लें, या सिर्फ ईमान ले लें, या सिर्फ अकीदा ले लें, तो ये होल जो है इनकम्प्लीट है। समझे आइए, यानी मिसाल आप समझेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या होता है, ये जब आपस में मिलता है तो समग्र जो है बन जाता है। लेकिन अगर आप सोडियम में से क्लोरीन को अलग कर दें और क्लोरीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह शहादत उज़्मा आपको अच्छी हो जाएगी, मतलब लेकिन जब क्लोरीन जो है मतलब उसके साथ मिलेगी जहां तो वो जो है समग में जो है तब्दील हो जाएगा। तो आप जब इस्लामी कानून को बाइफरकेट करते हैं ना, मतलब तो क्लोरीन वाला इफेक्ट होता है उसका। मदरसे से पढ़ के आ गए आप, जो आपने किसी का मदरसे के अंदर क्या करके आप जो बूढ़ी और औरत को इस्लाम में तो कुत्ते को पानी पिलाओ, तुम अपनी सास को जो है तुम्हें पानी पिलाते हुए शर्म आ रही, तुम तो काबिल नहीं हो, तुमने मदरसे में पढ़ाई है, मतलब कौन सा मदरसा कौन सा दीन जो है, मतलब जिस दीन ने कुत्ते के कुत्ते को पानी पिलाने पर उसकी मफरत कर दी, तुम उसकी सास को जो है मतलब पानी पिलाने पर तैयार नहीं हो, तुम एक मजहबी औरत हो, तुम एक कानूनी औरत हो, और तुम्हारा हशर कानून से ही होगा, जो मतलब 3 महीने में उसकी तबीयत जो है ठीक हो गई है, मतलब तो जब आप ये सेपरेट कर देना, मतलब और ये मगरिब का खास जो तरीका है, हर चीज को सेपरेट करता है, सेपरेट करता है और उसको पार्टीशन करता है, और फिर उसके बाद देखें साहब ये चीजें पता है। लेकिन जब आप उसको होल में ले आएंगे तो वो मतलब सीएल को आप अलग कर देंगे जो मतलब उससे सोडियम से, तो मसला है। लेकिन जब उसको सोडियम के साथ रखेंगे तो मसला नहीं है, मतलब और कोई हाथ अगर
सर हिस्टोरिकली इवेंट जो भी वकूफ पजीर होते हैं वो मतलब इस्लामिक पैराडाइम में अगर देखें हिस्टोरिकली जो भी इवेंट्स वकूफ पजीर हुए हैं उनको उसी वक्त जो है वो एड्रेस किया गया है या हाइपोथेसिस बनाकर इसी तरह से जो है क्या कहते हैं ट्रेडिशन रहा है?
क्या मतलब मैं आपका सवाल,
मतलब जैसे कि अभी आपने कहा ना कि अभी वो मसला हुआ तो नहीं है, फिर मसले की बात क्यों कर रहे हैं?
कौन सा मसला?
इन कोई भी प्रॉब्लम, जैसे अभी वहाब भाई ने बताया कि जो है क्या कहते हैं अभी वो प्रॉब्लम नहीं हुआ कि उसने अपनी वालदा से शादी कर ली एंड स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीजें, तो फिर उस मसले के बारे में बात क्यों की जाए? हिस्टोरिकली इवेंट्स पहले वकूफ पजीर हुए हैं उसी वक्त उनका जो है क्या कहते हैं
इसमें कोई वो नहीं है। बात यह मतलब बुनियादी बात यह कि इस्लामी तारीख में आपको मिसाल के तौर पर जो है हनफी फिखा है उसके अंदर बहुत सारे फसायल तकरीबन 18,000 फसायल ऐसे हैं जो वहां पे खूब पजीर नहीं हुए लेकिन इमेजिन कर लिए गए कि ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको एक बताऊं, जो अमेरिका में एक स्कॉलर ऑर्गेनिस्ट जो है मतलब उसने यानी वो है असर का है मतलब उसने जो मतलब एतराज उसने किया मतलब इस्लामी हुआ ये कि पता नहीं इंडिया में शायद हुआ था मसला आपको याद होगा कि एक उसने जो मतलब सुसर ने जो है अपनी बहू के साथ जो है अत्कारी की मतलब तो मसला पैदा हो गया मतलब तो उसने ये कहा कि साहब उससे पूछा कि भाई आप बताएं, कहने की देखें ये इस्लामी इतिहास जो है मतलब इसके अंदर इस मसले का कोई हल मौजूद नहीं ठीक है। हालांकि जो है अकीमों ने जो है बहुत सारे मसाइल एडवांस में सोचे तो उन्होंने इसको नहीं रखा। अब जाहिल स्कॉलर को ये नहीं पता कि इस्लामी तारीख और तहजीब के अंदर ये तस्वुर करना ही महाल था कि ये काम हो सकता है मतलब यानी बाप का और सुसर का जो अखान है इस्लामी तहजीब और तारीख में यानी ये किसी फकीह के रहम व गुमान के किसी आखिरी हिस्से में भी नहीं आ सकता था क्योंकि वो एक रूहानियत के साथ चल रहा है ना। अब आप जिस सदी में मौजूद हैं तो आप जो है मॉडर्निज्म और ह्यूमन राइट की रूहानियत के अंदर रहते हैं। मॉडर्निज्म और ह्यूमन राइट्स के अंदर ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए ये मतलब क्योंकि जो हालात हैं जो अजबाब हैं जो فسائل ہیں، جو امکانات، جو سہولتیں ہیں، اس میں سب ممکن ہے. جو آدمی صبح شام اڑیا فلم میں دیکھ رہا ہے، مطلب 80 سال کا آدمی جو ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، مطلب یعنی اس کی مطلب اخلاقی اتھارٹی کیا ہے. مطلب یہ نا، یہ قانون جو ہے یہ تو اخلاقیات کے ساتھ چلتا ہے نا. اگر وہ اخلاقیات نہیں ہے، اگر وہ جو ہے رشتوں کا مطلب احترام نہیں ہے، اگر وہ جو ہے حجابات نہیں ہے، تو اسلامی قانون کے اخلاق کے اندر چلے گا یہ مطلب. تو یہ اعتراضات ہوتے ہیں مطلب اس طرح کے. تو یہ کہ اس طرح کے جو مطلب سوالات ہوتے ہیں ان کو ایڈریس ایٹ دا مومنٹ بھی ہوا ہے اور ایڈوانس میں بھی ہوا ہے. اس کی کوئی مطلب اسپیسیفک اسٹریٹجی نہیں ہے، مطلب کہ اس وقت ہوگا تو یہ پہلے ہوگا. یہ مختلف اس کے ماڈلز ہیں، مطلب یہ اسلامی تاریخ میں کھیلتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نا باقی میں شکریہ. آپ میں سے کسی نے